आगे सबक देखिए भाई, फइल्लम युहद्दल मशहूदु अलैहि हत्ता रजअ वाहिदुम मिनहुम हुद्दु जमीअ वसक़तल हद्दु अनिल मशहूदि अलैहि وقال محمد رحمه الله تعالى حد الراجع خاصة لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع كما إذا رجع بعد الإمضاء. بھئی گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص کے زنا پر چار افراد نے گواہی دی, अलबत्ता इन चार गवाहों में से दो गवाह ये कहते हैं कि औरत ने अपनी मर्जी से जिना पर कुदरत दी है, और दो गवाह ये कहते हैं कि मर्द ने औरत के साथ जबरदस्ती की है, तो फिर इस सूरत में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों से हद साकित हो जाएगी, यानी ना मर्द को हद लगाई जाएगी और ना औरत को हद लगाई जाएगी. जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि सिर्फ मर्द को हद लगाई जाएगी. वजह यह कि चारों गवाहों का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस आदमी ने जिना किया है. अलबत्ता दो गवाह इस आदमी का एक और जुर्म यानी इकराह भी बयान कर रहे हैं कि इसने जबरदस्ती की है. तो बहरहाल चारों गवाह इस आदमी के जिना पर मुत्तफिक हैं, लिहाजा उस आदमी को हद लगाई जाएगी, जबकि औरत को हद नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि औरत पर हद जिना उसी वक्त वाजिब होगी जब उसने अपनी रजामंदी से जिना पर कुदरत दी हो, और यहां पर औरत की रजामंदी पर चार गवाह मौजूद नहीं है, लिहाजा औरत को हद नहीं लगाई जाएगी. जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर मशहूद भी ही मुख्तलिफ हो गया, इसलिए क्योंकि दो गवाह जो हैं वो जीना बिल रजा की गवाही दे रहे हैं, और दो गवाह जीना बिल इकराह की गवाही दे रहे हैं, और जीना बिल रजा और जीना बिल इकराह ये अलग अलग चीजें हैं, ये इकट्ठी नहीं हो सकती. तो मालूम हुआ गवाहों के दोनों फरीकों का मशहूद भी ही अलग अलग है. दो गवाहों का मशहूद भी ही है जीना बिल रजा, और दो गवाहों का मशहूद भी ही है जीना बिल इकराह. तो किसी एक जीना पर भी चार गवाहों का निसाब पूरा नहीं है, लिहाजा इस वजह से हद दोनों से साकित हो जाएगी. और नीज इसलिए हद साकित हो जाएगी, इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो दो गवाह जो औरत की रजामंदी पर गवाही दे रहे हैं, ये दरअसल तोहमत लगा रहे हैं इन दोनों पर, लिहाजा इन पर हद कज़फ आनी चाहिए. लेकिन वो जो दो गवाह हैं इकराह वाले, उनकी वजह से औरत का मुहसना होना साकित हो गया, मालूम हुआ औरत से जिना हुआ है, चाहे बेशक जबरदस्ती जिना हुआ है, तो वो औरत गुनाहगार तो नहीं, लेकिन बहरहाल अब वो जिना से पाक दामन न रही, तो लिहाजा वो मुहसना न रही, और जब वो गैर मुहसना हुई तो उस पर जिना का इल्जाम लगाने वाले पर हद कजफ भी नहीं आ सकती. और जब उस औरत की वजह से दो गवाहों पर हद कजफ नहीं आ सकती, तो जानी मर्द की वजह से भी इन दो गवाहों पर हद कजफ नहीं आ सकती, क्योंकि जिना मर्द और औरत का एक ही फेल है. तो इन दोनों में से जब एक की वजह से गवाहों पर हद कजफ नहीं आ सकती, तो दूसरे की वजह से भी हद कजफ उन पर साबित नहीं की जा सकती. तो ये जो दो गवाह हैं, ये फरीके मुखालिफ बन गए. क्या बन गए? फरीक मुखालिफ बन गए, क्योंकि ये इन पर रजामंदी का इल्जाम लगा रहे हैं, और फरीक मुखालिफ की गवाही तो मोतबर नहीं. तो इन दो गवाहों की गवाही कल आदम हो गई. जब इनकी गवाही कल आदम हो गई, तो मर्द के जिना पर भी चार गवाह न हुए, तो लिहाजा मर्द पर भी हद जिना जारी नहीं की जाएगी. और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर चार गवाहों ने एक मर्द और औरत के जिना पर गवाही दी, अलबत्ता उन्होंने जगह अलग अलग बयान की. मर्द और औरत वही हैं, दो गवाह कहते हैं इस मर्द ने इस औरत के साथ फुला मकाम पर जिना किया, और दूसरे गवाह कहते हैं कि इस मर्द ने इस औरत के साथ फुला मकाम पर जिना किया, अलग अलग जगह जिक्र करते हैं. तो फिर इस सूरत में याद रखो, दोनों से हद साकित हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जगह बदलने की वजह से जिना बदल गया. तो हर जीना पर गोया सिर्फ दो गवाह हैं, तो जब हर जीना पर दो गवाह हैं तो गवाहों का निसाब पूरा नहीं, क्योंकि गवाह तो चार होने चाहिए थे, लिहाजा किसी एक पर भी हद नहीं आएगी और खुद गवाहों पर हद कजफ भी नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि उनके अपने गुमान में तो वो एक ही जीना की गवाही दे रहे हैं, औरत भी एक है मर्द भी एक है, एक ही जीना की बात कर रहे हैं, अलबत्ता सिर्फ फर्क जो आ रहा है वो जगह की वजह से आ रहा है। तो सूरत और औरत के एक होने के एतबार से एक जीना होने का शुबा होता है और शुबे की वजह से हद साकित हो जाया करती है, लिहाजा इन गवाहों पर हद कजफ साबित नहीं होगी। और अगर इन चार गवाहों ने आपस में इख्तलाफ किया जगह का, लेकिन एक ही कमरे के अंदर, दो गवाह कमरे का एक हिस्सा बयान करते हैं कि यहां जिना हुआ है और दूसरे दो गवाह कमरे का दूसरा हिस्सा बयान करते हैं कि यहां जिना हुआ है, तो इस सूरत में साहिब हिदाया ने बतलाया था कि हद जारी की जाएगी, इसलिए क्योंकि यहां ततबीक और तौफीक मुमकिन है, यानी दोनों गवाहों के कौलों को एक दूसरे का मुआफिक बनाना मुमकिन है, कि यूं कहा जाए कि इब्तिदाए जिना एक किनारे पर हुई तो इंतहाए जिना दूसरे किनारे पर हुई हरकत करने की वजह से भाई। और नीज हो अगर कमरा छोटा है और दरमियान में दोनों जिना कर रहे हैं तो हर एक ने उसको अपने करीब समझा, लिहाजा हर एक को जो मालूम हुआ उसने उसके मुताबिक गवाही दे दी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर एक मर्द और औरत के जिना पर चार गवाहों ने गवाही दी कि इसने फुला वक्त के अंदर फुला जगह पर इस औरत के साथ जिना किया है, और चार दूसरे गवाहों ने भी आईनी ही वही वक्त जिक्र किया कि इसने इसी औरत के साथ उसी वक्त के अंदर फुला मकाम पर जिना किया, तो फिर इस सूरत में याद रखो मर्द और औरत पर हद वाजिब नहीं होगी, इसलिए क्योंकि एक ही मर्द और औरत एक ही वक्त के अंदर दो मुख्तलिफ जगह पर जिना नहीं कर सकते, तो इन गवाहों के दोनों फरीकों में से एक फरीक तो कतई और यकीनी तौर पर झूठा है, अलबत्ता उसकी तायीन नहीं है कि कौन सा वाला झूठा है, तो लिहाजा दोनों की गवाही में शुबा आ गया कि मालूम नहीं ये वाले झूठे हैं या मालूम नहीं ये दूसरे वाले झूठे हैं, और शुबे की वजह से हद साबित नहीं हो सकती। और नीस इन दोनों गवाहों में से किसी पर हद कजफ भी नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है दोनों में से कोई एक सच्चा हो भाई, लेकिन उसकी भी तायीन नहीं कि इन दोनों में से कौन सच्चा है, तो लिहाजा सच्चा होने के शुबे की वजह से हद कजफ भी जारी नहीं की जाएगी इन पर। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक औरत के जिना पर चार गवाह आ गए लेकिन जब उस औरत को औरतों ने देखा तो उसे बाकेरा पाया, तो इस सूरत में भी मर्द और औरत से हद साकित हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जिना की वजह से औरत की बकारत बाकी नहीं रह सकती। उसके बाद मैंने आपको गवाहों की अकसाम बतलाई थी कि गवाही के एतबार से गवाह चार किस्म के हैं, कुछ गवाह वो हैं जो अहले तहमुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तौर पर, और वो गवाह हैं कि जिनमें पांच सिफतें पाई जाएं, आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो और आदिल हो, यानी काबिल एतमाद। तो ये जो गवाह हैं ये अहले तहमुल भी हैं और अहले अदा भी हैं कामिल तौर पर, और अगर गवाह फासिक हैं यानी आदिल नहीं है, आजाद भी हैं, आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, मुसलमान भी हैं लेकिन आदिल नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है बल्कि फासिक हैं, यानी अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते रहते हैं, तो फिर इस सूरत के अंदर याद रखो ये अहले तहमुल और अहले अदा हैं तो, लेकिन नाकिस तौर पर, जबकि अंधे और महदूद फिल कजफ ये अहले तहमुल तो हैं लेकिन अहले अदा नहीं, यानी ये गवाह बन तो सकते हैं लेकिन गवाही दे नहीं सकते, अगर काजी के पास गवाही देंगे तो काजी इनकी गवाही कबूल नहीं करेगा क्योंकि ये अदाए शहादत के अहल नहीं है भाई। और कुछ गवाह वो हैं कि जो ना अहले तहमुल हैं और ना अहले अदा हैं, ना वो गवाह बन सकते हैं ना वो गवाही दे सकते हैं, और वो चार किस्म के अफराद हैं, गुलाम हो या नाबालिग हो या मजनून हो या काफिर हो, तो ये जो हैं ना अहले तहमुल हैं और ना अहले अदा हैं। अब सूरत मसला ये कि एक शख्स के खिलाफ चार आदमियों ने गवाही दे दी लेकिन बाद में पता चला कि ये चारों तो गुलाम हैं और गुलाम ना तो अहले तहमुल हैं और ना अहले अदा हैं, या बाद में पता चला कि ये चारों महदूद फिल कजफ हैं और महदूद फिल कजफ जो है वो तो अहले अदा नहीं है, अहले तहमुल तो हैं लेकिन अहले अदा नहीं है, या इन चार गवाहों में से कोई एक गुलाम निकला या कोई एक जो है महदूद फिल कजफ निकला, तो फिर इस सूरत के अंदर इन सब को हद कजफ लगाई जाएगी। इनकी गवाही से जिना साबित नहीं, क्योंकि जिना के सबूत के लिए कम अज कम चार गवाह चाहिए और वो चारों भी आदिल होने चाहिए भाई। तो लिहाजा इन गवाहों को हद लगाई जाएगी, अलबत्ता मशहूदुन अलैह यानी जिसके खिलाफ गवाही दी है उसको हद नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इनकी गवाही से जिना साबित नहीं हो सकता। और अगर गवाही देने वाले फासिक हैं तो फासिकों की गवाही से जिना साबित नहीं हो सकता, तो लिहाजा मशहूद अलैह को हद नहीं लगाई जाएगी और खुद इन फासिक गवाहों को भी हद नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि गवाही का निसाब पूरा है। तो ये अगरचे फासिक हैं लेकिन फिर भी एहतमाल है, हो सकता है सच बोल रहे हों, तो गवाही का निसाब पूरा है, गवाह सिर्फ फासिक हैं तो फिर इन गवाहों को हद नहीं लगाई जाएगी भाई। और शाहिद पे हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर गवाहों की तादाद चार से कम हो तो फिर ये गवाही है ही नहीं, ये कजफ है, ये तोहमत लगा रहे हैं जिना की, लिहाजा इनको हद लगाई जाएगी भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर चार गवाहों ने किसी आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी और उस आदमी पर हद जिना भी जारी कर दी गई, और फिर उसके बाद पता चला कि इन गवाहों में से एक गुलाम था या एक महदूद फिल कजफ था, तो इस सूरत में इन सब को हद कजफ लगाई जाएगी, क्योंकि ये कजफ है, शहादत नहीं है भाई। और नी साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर ये हद लगाने की वजह से मसलन शादीशुदा था फिर तो रजम किया गया है, और अगर गैर शादीशुदा था तो फिर जिना की हद के तौर पर 100 कोड़े लगाए गए हैं। अब जब मालूम हुआ कि एक गवाह गुलाम था या मालूम हुआ कि एक गवाह महदूद फिल कजफ था, तो यह बात यकीनी तौर पर मालूम हो गई कि काजी से फैसले में गलती हुई है। लिहाजा जब काजी से फैसले में गलती हुई है तो अगर उस शख्स को रजम किया गया था तो फिर इस सूरत के अंदर जमान जो है बैतुल माल से अदा किया जाएगा, इसलिए क्योंकि यह गलती काजी से हुई है और काजी मुसलमानों के लिए अमल कर रहा है, मुसलमानों के लिए बैठा हुआ है और उनके मसाइल हल कर रहा है, लिहाजा जमान भी मुसलमानों के माल में से यानी बैतुल माल से अदा किया जाएगा भाई। और यह बिल इत्तेफाक है यह मसला साहिबैन और इमाम साहिब के नजदीक, यानी अगर बाद में पता चला कि इन गवाहों में से एक गवाह गुलाम था या महदूद फिल कजफ था, तो इस सूरत के अंदर हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि काजी के फैसले का गलत होना यकीनी तौर पर साबित हो गया, उस आदमी को रजम किया गया है, एक जान जाया हुई है और काजी के गलत फैसले की वजह से जान जाया हुई है, लिहाजा बैतुल माल से जमान अदा किया जाएगा। तो यह मसला इत्तेफाकी है हमारे तीनों अइमा के दरमियान। लेकिन अगर इसके मुकाबले में अगर हद जो थी वह जर्ब थी, कोड़े लगाना, और फिर कोड़े लगाने की वजह से वो आदमी जख्मी हो गया या वो आदमी हलाक हो गया, तो फिर इस सूरत के अंदर ये जो जमान आएगा ये भी बैतुल माल पर आएगा साहिबैन के नजदीक, जबकि इमाम साहब फरमाते कि नहीं, इस सूरत में कोई जमान नहीं आएगा, इस सूरत में कोई जमान नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यह गलती जल्लाद की है, जल्लाद को ऐसी जर्ब लगाने का हुक्म दिया था काजी ने जिसके अंदर दूसरे को जख्म भी ना लगे और दूसरा हलाक भी ना हो, लिहाजा जब जल्लाद ने ऐसी जर्ब लगाई जिससे जख्म लगाया दूसरा हलाक हो गया, तो जल्लाद का यह फेल काजी की तरफ मुंतकिल नहीं होगा, क्योंकि काजी ने तो उसे ऐसी जर्ब लगाने का हुक्म नहीं दिया। मालूम हुआ यह जल्लाद जो है कोड़े लगाने में माहिर नहीं है, तो इस सूरत में जल्लाद पर जमान आना चाहिए, लेकिन जल्लाद पर जमान वाजिब नहीं किया जा सकता, वरना तो लोग जो हैं हद कायम करने से ही रुक जाएंगे कि कहीं अगर हमसे गलती हो गई तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो ये इमाम साहब फरमाते हैं, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि काजी ने जल्लाद को मुतलक जर्ब लगाने का हुक्म दिया था, जिस किस्म की भी चाहे जर्ब हो, चाहे सिर्फ तकलीफ देने वाली हो, चाहे जख्मी करने वाली हो और चाहे हलाक करने वाली हो, तो जल्लाद को मुतलक जर्ब का हुक्म था जो हर किस्म की जर्ब को शामिल है, तो लिहाजा जल्लाद का फेल काजी की तरह मुंतकिल होगा, और जब जल्लाद का फेल काजी की तरह मुंतकिल हो गया और काजी तो मुसलमानों के लिए अमल कर रहा है, लिहाजा मुसलमानों के माल में से ही इसका जमान अदा किया जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर गवाहों ने रुजू कर लिया, पहली सूरत क्या थी? गवाहों का पता चला कि वो गुलाम है या महदूद फिल कजफ है, उन्होंने रुजू नहीं किया, तो फिर इस सूरत में बैतुल माल पर जमान आएगा, साहिबैन फरमाते हैं। जबकि अगर गवाहों ने रुजू कर लिया तो फिर जमान इन गवाहों पर आएगा, इनकी गलती की वजह से यह नुकसान हुआ है भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि चाहे गवाहों के बारे में पता चले कि ये गुलाम है या महदूद फिल कजफ है, चाहे ये गवाही से रुजू कर लें, हर हाल के अंदर किसी पर भी जमान नहीं आएगा, क्योंकि जमान तो असल में जल्लाद पर आना चाहिए था, लेकिन उस पर जमान को वाजिब नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदायत ने शहादत आले शहादत को बयान फरमाया। मैंने आपको बतलाया था कि बाज औकात गवाह को अगर कोई उजर है वो काजी के पास हाजिर नहीं हो सकता, यानी शदीद बीमार है या वो सफर पर जा रहा है, तो इस सूरत में वो अपनी गवाही पर गवाह बना सकता है। हर गवाह अपनी गवाही पर दो गवाह बना ले, हर गवाह अपनी गवाही पर दो गवाह बना ले, तो जो असल गवाह है उनको कहेंगे शुहूदे असल, और दूसरे गवाह जिनको शुहूदे असल ने अपनी गवाही पर गवाह बनाया है उनको शुहूदे फरा कहेंगे, शुहूदे फरा भाई। तो लिहाजा ये शुहूदे फरा फिर काजी के पास जाते हैं और फिर उस मसले की गवाही देते हैं भाई, और शरीयत ने जरूरत की वजह से इसकी इजाजत दी है। अलबत्ता हुदूद के मसले के अंदर शहादत आले शहादत जायज नहीं है भाई, और नीज ये भी याद रखना कि जिस तरह हुदूद के मसले में शहादत आले शहादत जायज नहीं है, इसी तरह किसास के मसले में भी शहादत आले शहादत जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि हुदूद भी शुबे की वजह से साकित हो जाती हैं और किसास भी शुबे की वजह से साकित हो जाता है। लिहाजा हुदूद और किसास के मसले में शहादत अला शहादत जायज नहीं है। तो अब जिना के मसले में चार गवाह काजी के पास आ गए और उन्होंने शहादत अला शहादत दी, तो ये तो हुदूद का मसला है, तो काजी उनकी गवाही कबूल नहीं करेगा, उनको रद्द कर देगा। और बाद में फिर शुहूदे असल आ गए गवाही देने, तो कहते हैं अब शुहूदे असल की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि शुहूदे असल की गवाही एक मरतबा रद्द हो चुकी है। वो जो शुहूदे फरा को काजी ने रद्द किया था, वो शुहूदे फरा इन शुहूदे असल ही के तो कायम मकाम थे, क्योंकि इन्होंने ही उनको हुक्म दिया था और इन्होंने ही उनको जिम्मेदार बनाया था, तो लिहाजा वो एक मरतबा शुहूदे असल की गवाही बाज एतबार से रद्द हो चुकी है, तो अब दोबारा उसी मसले में शुहूदे असल की गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि यह हुदूद के मसले में है कि शुहूदे फरा की गवाही रद्द हो जाए तो शुहूदे असल की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन और मसाइल के अंदर अगर शुहूदे फरा की गवाही रद्द हो जाए तो फिर भी शुहूदे असल की गवाही कबूल की जा सकती है भाई। और उसके बाद साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर चार आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी और उस आदमी को रजम कर दिया गया, बाद में इन गवाहों में से एक ने रुजू कर लिया, तो सिर्फ इस एक को हद लगाई जाएगी और इस एक पर रुबए दियत का जमान आएगा, क्योंकि एक आदमी की जान गई है और जान ना हक जाए तो वहां दियत आया करती है, और यहां पर चार गवाह हैं तो इस दियत को उन पर तकसीम करेंगे तो हर गवाह के हिस्से में रुबए दियत आ रही है, तो एक ने रुजू किया है तो उसको हद भी लगाई जाएगी हद कजफ, और नीज उस पर रुबए दियत का जमान भी वाजिब किया जाएगा भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि यहां पर इस रुजू करने वाले पर माल नहीं वाजिब किया जाएगा बल्कि इसको भी किसास में कत्ल किया जाएगा, क्योंकि इन गवाहों की गवाही की वजह से एक आदमी की जान गई है भाई। लेकिन हमारे नजदीक जो है इस एक गवाह पर रुबए दियत आएगी, दूसरा गवाह भी रुजू कर ले अगर तो उस पर भी रुबए दियत आ जाएगी और उसको भी हद लगाई जाएगी, तो हमारे नजदीक ये रुजू करने वाले गवाहों को हद भी लगाई जाएगी और इन पर जमान भी आएगा। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन पर जमान तो आएगा लेकिन इन रुजू करने वालों पर हद नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये जो रुजू करने वाले हैं या तो इनको आप काजिफुल हय करार देंगे या आप इनको काजिफुल मय्यत करार देंगे। काजिफुल हय यानी जिंदा पर तोहमत लगाने वाले, काजिफुल मय्यत यानी मुर्दा पर तोहमत लगाने वाले। तो एक गवाह ने रुजू कर लिया तो या तो आप यूं शुमार करेंगे कि इसने जब गवाही दी थी उस वक्त ही इसने तोहमत लगाई थी तो ये काजिफुल हय हुआ, तो इस सूरत में भी इस पर हद कजफ नहीं आती, क्योंकि हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती और वो जिंदा मर चुका है। जब मर चुका है तो हद कजफ भी साकित हो चुकी है। लिहाजा काजिफुल हय होने की सूरत में आप इस रोजो करने वाले गवाह को हद कजफ नहीं लगा सकते। और अगर आप इसको काजिफ मैयत करार देते हैं कि इसने फिलहाल रुजू किया है और इस वक्त तो वो मरजूम मर चुका है, तो ये काजिफुल मैयत हुआ, तो फिर भी इस पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि ये कजफ कर रहा है, यानी जिना की तोहमत लगा रहा है एक ऐसे शख्स पर जो मरजूम बे हुक्मिल काजी है, जिसको काजी के हुक्म की वजह से रजम किया गया है, और काजी के हुक्म की वजह से जिसको रजम किया गया है मालूम हुआ उसने जिना किया था, तो मालूम हुआ वो मोहसन ना रहा, पाकदामन ना रहा। जब पाकदामन ना रहा तो अब उस पर तोहमत लगाने वाले पर हद कजफ भी जारी नहीं की जा सकती। उसको तो काजी के फैसले की वजह से रजम किया गया था, और मैंने आपको बतलाया था कि वो शख्स जो मरजूम बे हुक्मिल काजी है उस पर अगर आम लोगों में से कोई उसको जानी कहता है या जिना का इल्जाम उस पर लगाता है उस मरने वाले पर, तो मरने वाले की औलाद भी इस शख्स पर हद कजफ का मुतालबा नहीं कर सकती, क्योंकि वह शख्स मरजूम बे हुक्मिल काजी है आम लोगों के हक में। और मरजूम भी हुक्म काजी तो वो है जिसे काजी ने जीना की वजह से रजम करवाया है। मरजूम भी हुक्म काजी तो वो है जिसे काजी ने जीना की वजह से रजम करवाया है, तो वो जीना से पाक दामन ना रहा, मालूम हुआ उसने जीना किया था, तो लिहाजा वो मोहसन नहीं है। और गैर मोहसन पर कोई जीना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ वाजिब नहीं होती भाई। इसलिए मरजूम भी हुक्मिल काजी पर कोई जिना की तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती भाई। और ये जो गवाह है जिसने रुजू किया है, तो अगरचे इसके रुजू करने से यह पता चल गया कि मालूम हुआ उस शख्स को नाहक कत्ल किया गया था, अगरचे पता चल गया कि उस शख्स को नाहक कत्ल किया गया था, उसने जिना नहीं किया था, लेकिन फिर भी है तो वह मरजूम बे हुक्मिल काजी, और उसकी वजह से कम अज कम शुबा तो आ गया। अगरचे वो उसका मोहसन होना तो साकित नहीं हुआ काजी की गलती की वजह से, लेकिन बहरहाल शुबा तो आ गया, और शुबे की वजह से भी हद साकित हो जाया करती है। तो इमाम जुफर फरमाते हैं कि जैसे कोई आम आदमी इस मरजूम बे हुक्म काजी पर तोहमत लगाए तो उस पर हद कजफ जारी नहीं हो सकती, तो यह रुजू करने वाला भी अगर आप इसको काजिफुल मैयत भी करार दे दें तो इसने कजफ जो किया है, जो तोहमत लगाई है, वह मरजूम बे हुक्म काजी पर लगाई है, लिहाजा कम अज कम यहां शुबा तो जरूर आ गया, और शुबे की वजह से आप इसको भी हद नहीं लगाई जा सकती। तो चाहे आप इस रुजू करने वाले को काजिफुल हय करार दें, चाहे आप इसको काजिफुल मैयत करार दें, किसी सूरत में भी इस पर हद साबित नहीं होती भाई। जबकि हम जवाब में कहते हैं कि जब इस गवाह ने रुजू कर लिया तो इसकी गवाही फसख हो गई, जब इसकी गवाही फसख हो गई तो इसी गवाही पर तो काजी के फैसले की बुनियाद थी, तो काजी का फैसला भी फसख हो गया, लेकिन इसी रुजू करने वाले के हक में, बाकियों के हक में नहीं, क्योंकि बाकियों के ने जो गवाही दी थी उसके साथ काजी का फैसला मिल चुका है। और मैंने आपको बतलाया था कि जब गवाही के साथ काजी का फैसला मिल जाए तो वो गवाही पक्की हो जाती है। चुनाचे इसीलिए चार में से एक ने रुजू कर लिया तो बाकियों को हद नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी गवाही के साथ काजी का फैसला मिल चुका है। अगरचे गवाहों की तादाद अब कम हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी गवाही पक्की हो गई, मजबूत हो गई, क्योंकि उसके साथ काजी का फैसला मिल चुका है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा जब इस एक गवाह ने रुजू किया तो इसकी शहादत फसख हो गई, जब शहादत फसख तो इसी शहादत पर बुनियाद थी काजी के फैसले की, तो इस आदमी के हक में काजी का फैसला भी फसख हो गया, काजी का फैसला भी फसख हो गया, यूं कहें काजी का फैसला कल आदम हो गया, ऐसे हो गया जैसे है ही नहीं। तो मालूम हुआ जब इसके हक में काजी का फैसला ही फसख हो गया तो वो शख्स इसके हक में मरजूम बे हुक्मिल काजी ना रहा। औरों के हक में तो वो मरजूम बे हुक्मिल काजी है, लेकिन रुजू करने वाले के हक में वो मरजूम बे हुक्मिल काजी नहीं है। जब वो मरजूम बे हुक्मिल काजी नहीं है तो अब इस काजिफे मैयत को हद लगाई जाएगी। हमने इसको काजिफे मैयत करार दिया, हमने इसको काजिफे मैयत करार दिया, लेकिन यहां पर किसी किस्म का शुबा नहीं है, क्योंकि इसकी गवाही फसख हो चुकी और गवाही पर बुनियादी काजी के फैसले की, काजी का फैसला भी कल आदम हो गया, गोया है ही नहीं। जब काजी का फैसला ही नहीं है तो मरजूम बे हुक्मिल काजी भी नहीं। मरजूम बिल हुक्मिल काजी का क्या माना? मरजूम वो जिसको रजम किया गया है, बे हुक्मिल काजी काजी के फैसले से। तो जब काजी का फैसला नहीं तो काजी के फैसले से जो मरजूम है वो भी नहीं है। भाई बात समझ में आ रही है? तो जब हुक्म काजी नहीं तो मरजूम बे हुक्मिल काजी भी नहीं है इसी रुजू करने वाले के हक में, लिहाजा इसके हक में कोई शुबा नहीं। इसने जो जिना की तोहमत लगाई है यहां मरजूम बे हुक्मिल काजी होने का कोई शुबा नहीं। जब शुबा नहीं तो इसको हद कजफ लगाई जाएगी। बात समझ में आ गई? जबकि इसके मुकाबले में और लोगों के हक में वो मरजूम बे हुक्मिल काजी है, तो वो अगर उसको जिना की तोहमत लगाते हैं तो उनको हद नहीं लगाई जाएगी। भाई बात समझ में आ गई? अब आइए आज के सबक पर। फइल्लम युहद्दल मशहूद अलैहि हत्ता रजअ वाहिदुम मिनहुम हुद्दू जमीआ वसकतल हद्दु अनिल मशहूदि अलैह वकाल मुहम्मदुन रहिमहुल्लाहु तआला हुद्दर राजिउ खासतन। भाई गुज़श्ता सबक में आखिर में आपने मसला पढ़ा था कि अगर काजी के फैसले के बाद उस शख्स को रजम कर दिया गया तो काजी के फैसले की वजह से सब गवाहों की गवाही पक्की हो गई, लिहाजा इन गवाहों में से एक ने रुजू किया तो सिर्फ इस रुजू करने वाले गवाह को हद लगाई जाएगी और इस पर रुबए दियत भी आ जाएगी जमान के तौर पर। लेकिन अब आज आपको बताएंगे कि यह वो सूरत थी जब काजी ने फैसला भी कर दिया था और हद भी नाफिज हो गई थी, लेकिन अगर गवाहों में से किसने रुजू कर लिया काजी के फैसले से पहले, या काजी ने फैसला तो कर दिया लेकिन अभी हद नाफिज नहीं हुई। और आप पढ़ चुके हैं कि हुदूद के मसले में हद को नाफिज करना यह भी कजा का हिस्सा है, यह भी काजी के फैसले का हिस्सा है। तो लिहाजा काजी ने फैसला कर दिया, हद अभी नाफिज नहीं हुई, इन गवाहों में से किसी ने रुजू कर लिया तो यह भी इसी तरह है गोया काजी के फैसले से पहले ही रुजू कर लिया। और काजी के फैसले से पहले अगर गवाह रुजू कर लें और गवाही का निसाब कम हो जाए तो फिर याद रखो सबको हद लगाई जाती है। मसलन चार गवाह काजी के पास आए थे जिना के मसले में, इन्होंने गवाही दे दी और अभी काजी ने फैसला नहीं किया कि एक गवाह ने रुजू कर लिया। जब एक ने रुजू कर लिया तो पता चला गवाही का निसाब पूरा नहीं, जब निसाब पूरा नहीं मालूम हुआ बाकी सारे भी तोहमत लगा रहे हैं, वो गवाह नहीं हैं, लिहाजा सबको हद कजफ लगाई जाएगी। पिछले मसले के अंदर वो आदमी को रजम कर दिया गया था, हद का फैसला भी हुआ था और काजी ने नाफिज भी करवा दी थी, और नाफिज करना यह भी काजी के फैसले का हिस्सा है, तो गोया काजी का फैसला पक्का हो चुका। और जब काजी का फैसला हो गया, पूरा हो गया, तो मालूम हुआ उनकी गवाही भी पक्की हो गई। जब गवाही पक्की हो गई तो सिर्फ रुजू करने वाले को हद लगाएंगे और सिर्फ उसी पर जमान आएगा, बाकियों को हद भी नहीं लगाएंगे और उन पर जमान भी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर दूसरी सूरत है कि गवाहों में से किसी गवाह ने काजी के फैसले से पहले ही रुजू कर लिया, या काजी के फैसले के बाद रुजू किया लेकिन हद के नाफिज होने से पहले रुजू कर लिया, और हद का नाफिज करना भी तो कजा काजी का हिस्सा है, तो हद के नाफिज करने से पहले भी रुजू कर ले तो यूं समझो गया काजी के फैसले से पहले ही रुजू कर लिया। और इस सूरत में अगर गवाही का निसाब कम हो गया तो इन सब को हद कजफ लगाई जाएगी। मालूम हुआ यह शहादत थी ही नहीं, यह कजफ था भाई हर लिहाज से। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फइल्लम युहद्दल मशहूद अलैही, और अगर मशहूद अलैह पर हद नहीं लगाई गई, वो जिसके खिलाफ इन्होंने जिना की गवाही दी है अभी उस पर हद नहीं लगाई गई, उससे पहले ही गवाह रुजू कर लेते हैं और अब शहादत का निसाब पूरा नहीं हो रहा तो सबको हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं फइल्लम युहद्दल मशहूद अलैही, और मशहूद अलैह को हद नहीं लगाई गई थी, हता रजअ वाहिदुम मिनहुम, यहां तक कि इन गवाहों में से एक ने रुजू कर लिया, खुद दो जमीआ, तो इन सबको हद लगाई जाएगी, वसकतल हद अनिल मशहूदी अलैही, और मशहूद अलैह से भी हद साकित हो जाएगी, मशहूद अलैह से भी हद साकित हो जाएगी। वकाल मोहम्मद उन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं खुद राजिउ खासतन, के खास तौर पर रुजू करने वाले को हद लगाई जाएगी। कौन सी सूरत बयान हो रही है? कि गवाहों में से एक ने रुजू किया है या दो ने रुजू किया है, और काजी फैसला कर चुका है लेकिन अभी उसने हद को नाफेज नहीं किया, तो काजी फैसला कर चुका है उसके बाद रुजू कर रहे हैं लेकिन नाफिज करना भी कजा का हिस्सा है। तो शेखैन रहमतुल्ला फरमाते हैं यूं समझो गोया काजी ने अभी फैसला किया ही नहीं, जब फैसला किया ही नहीं और कोई रुजू कर ले तो सबको हद लगाई जाती है, तो यहां भी सबको हद लगाई जाएगी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला फरमाते हैं कि काजी फैसला कर चुका है, अगरचे नाफिज नहीं किया लेकिन फैसला तो कर चुका है और उस फैसले की वजह से अब गवाहों की गवाही पक्की हो गई, गवाहों की गवाही पक्की हो गई। जब गवाहों की गवाही पक्की हो गई तो सिर्फ रुजू करने वाले को हद लगाएंगे, बाकियों को हद नहीं लगाएंगे। तो यह माना है वकाल मोहम्मद उन रहमहुल्लाह ताला खुद दर्राज खासतन के रुजू करने वाले को ही खास तौर पर हद लगाई जाएगी, लिअन्न शहादत तअक्कदत बिल कजाई, इसलिए क्योंकि इनकी गवाही पक्की हो गई बिल कजाई कजा की वजह से, काजी के फैसले की वजह से इनकी गवाही पक्की हो गई, फला यनफसिखु लिहाजा ये गवाही फसख नहीं होगी, इल्ला फी हक़ अर्राजिई मगर सिर्फ रुजू करने वाले के हक में, कमा इदा रजअ बादल इमजाई जैसे कि गवाह रुजू कर ले बाद अल इम्जाई हद को नाफिज करने के बाद। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब काजी फैसला कर दे तो गवाही पक्की हो जाती है, इसीलिए जब हद नाफिज कर दी और उसके बाद कोई एक रुजू करता है तो सिर्फ उसको हद लगाते हैं बाकियों को हद नहीं लगाते, तो यहां भी काजी का फैसला हो चुका है अगरचे अभी नाफिज नहीं हुआ। तो कहते हैं कमा इदा रजा बादल इम्जाई जैसे कि हद को नाफिज करने के बाद कोई गवाह रुजू कर ले तो सिर्फ उसी को हद लगाते हैं। वलहुमा शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है अनल इम्जा अमिनल कजाई कि हद को नाफिज करना भी यह कजा में से है जी। हद को नाफिज करना भी यह कजाए काजी का हिस्सा है, तो जब तक नाफिज नहीं यूं समझो गोया अभी काजी ने फैसला ही नहीं किया। तो वह लहुमा शेखैन रहमहुमल्ला की दलील यह है कि अनल इम्ज़ा मिनल क़ज़ाई के हद का नाफिज करना यह भी कजा का हिस्सा है, फसारा कमा इदा रजा वाहिदुम मिनहुम क़ब्ल अल क़ज़ाई तो यह ऐसे ही हो गया जैसे इन गवाहों में से एक ने रुजू कर लिया कजा से पहले ही, और कजा से पहले रुजू करने की सूरत में तो बिल इत्तेफाक सब पर हद आती है, तो यहां पर भी नाफिज करने से पहले अगर रुजू कर लिया है तो सब पर हद आएगी। तो कहते हैं कमा इदा रजा वाहिदुम मिनहुम क़ब्ल अल क़ज़ाई जैसे कि इन गवाहों में से कोई एक रुजू कर ले काजी के फैसले से पहले, वलिहादा सकत अल हद अनिल मशहूद अलैहि और इसीलिए हद जो है मशहूद अलैहि से साकित हो जाती है। शेखैन रहमहुमल्ला जवाब दे रहे हैं इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला को, इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला क्या फरमाते हैं कि काजी जब फैसला कर दे अभी नाफिज तो नहीं किया लेकिन फैसला तो कर दिया है, लिहाजा अब जब रुजू कोई करेगा तो सिर्फ उसी को हद लगाएंगे बाकियों को हद नहीं लगाएंगे। तो शेखैन फरमाते हैं कि हुदूद के मसले में हद का नाफिज करना भी कजा का हिस्सा है, इसीलिए तो जब काजी फैसला कर दे कि इस आदमी को रजम किया जाए या इसको 100 कोड़े लगाए जाए लेकिन अभी नाफिज नहीं की, उससे पहले गवाहों में से एक भी रुजू कर ले तो हद साकित हो जाती है। हालांकि मैंने आपको बतलाया था कि काजी जब एक मसले में फैसला कर दे गवाह बेशक रुजू कर ले काजी का फैसला नहीं टूटेगा, हां अगर नुकसान किसी का हुआ है वो नुकसान अब वो रुजू करने वाले को भरना पड़ेगा जी। उस पर जमान आ जाएगा। तो शेखैन फरमाते हैं काजी के फैसले के बाद हद के नाफिज करने से पहले अगर कोई गवाह रुजू कर ले तो हद ही साकित हो जाती है। मालूम हुआ अभी काजी का फैसला पूरा हुआ ही नहीं, अगर काजी का फैसला पूरा हो चुका था तो फिर एक दफा हद का फैसला होने के बाद अब उस फैसले को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हद साकित हो रही है काजी का फैसला खत्म हो रहा है। मालूम हुआ हुदूद के मसले में हद का नाफिज करना भी यह कजा का हिस्सा है। तो कहते हैं वलिहादा सकत अल हद अनिल मशहूद अलैहि और इसीलिए हद जो है मशहूद अलैहि से साकित हो जाती है अगर कजाए काजी के बाद भी कोई रुजू करे इमजा से पहले। वलौ रजा वाहिदुम मिनहुम क़ब्ल अल क़ज़ाई और अगर कजा से पहले इनमें से कोई एक भी रुजू कर ले हुद्दू जमीअ तो सबको हद लगाई जाती है। शेखैन रहमहुमल्ला की दलील चल रही है, वह इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला को जवाब दे रहे हैं कि जिस तरह कजाए काजी से पहले अगर कोई गवाह रुजू कर ले तो सारे गवाहों को हद लगाई जाती है, तो इसी तरह नाफिज करने से पहले भी अगर कोई रुजू कर लेगा तो इसी तरह समझेंगे जैसे कजाए काजी से पहले इसने रुजू कर लिया है और इस सूरत में भी सबको हद लगाएंगे। तो कहते हैं वला रजा वाहिदुम मिनहुम क़ब्ल अल-क़ज़ा इहुद्दू जमीआ, और अगर काजी के फैसले से पहले इनमें से कोई एक रुजू कर लेता, हुद्दू जमीआ, तो सबको हद लगाई जाती। तो यहां पर भी सबको हद लगाई जाएगी। वकाल जुफर रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला भी फरमाते हैं युहद्दुर राजिउ खासतन, कि रुजू करने वाले को ही खास तौर पर हद लगाई जाएगी। इमाम जुफर भी इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के साथ हैं, अलबत्ता दलील अलग अलग है दोनों की। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह की दलील यह थी कि काजी के फैसले की वजह से गवाही पक्की हो गई, लिहाजा सिर्फ रुजू करने वाले को हद लगाएंगे, जबकि इमाम जुफर रहमहुल्लाह भी यही फरमाते हैं सिर्फ रुजू करने वाले को हद लगाई जाएगी, लेकिन दलील उनकी अलग है। वो फरमाते सिर्फ इस एक ने रुजू किया है, लिहाजा बाकियों के मामले में इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। अपनी जात के हक में तो इसका रुजू सही है, लेकिन दूसरों के हक में इसका रुजू सही नहीं। यानी सिर्फ इस एक ने रुजू किया है तो इसी को हद लगाएंगे, बाकियों को हद नहीं लगाएंगे। बाकियों के हक में इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी कि बाकियों को भी झूठा करार दे दिया जाए। इसने रुजू कर लिया है तो इसके रुजू की वजह से अब बाकियों को भी झूठा करार दे दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। सिर्फ यह झूठा है, बाकियों के हक में इसकी तस्दीक नहीं की जाएगी, लिहाजा बाकियों की गवाही अपनी जगह पर कायम है, लिहाजा सिर्फ इसको हद लगाई जाएगी, बाकी गवाहों को हद नहीं लगाई जाएगी। भाई तो इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं युहद्दुर राजिउ खासतन, कि रुजू करने वाले को ही खास तौर पर हद लगाई जाएगी। लिया नहू ला युसद्दकु अला गैरिही, इसलिए क्योंकि रुजू करने वाले की तस्दीक नहीं की जाएगी दूसरों के खिलाफ। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन कलाम हम कज़फुन फिल असली, कि गवाहों का कलाम असल में कज़फ ही है। वही नमा यसीर शहादतम बित्तिसाल अल-क़ज़ा बिही, और काजी के फैसले के साथ मिलने से ही यह गवाही बनेगा। हम कहते हैं ये जो गवाहों ने गवाही दी है ये तोहमत ही है जब तक काजी का फैसला इनके साथ ना मिले, और जब तक काजी ने अभी हद जारी नहीं की तो काजी का फैसला अभी पूरा नहीं हुआ, लिहाजा इन सब की गवाही अभी गवाही नहीं बनी। जब गवाही नहीं बनी तो तोहमत है, और तोहमत की सूरत में सबको हद लगाई जाती है। तो वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन कलाम हम कज़फुन फिल असली, कि इन गवाहों का कलाम तो असल में कज़फ ही है, यानी वो जिना की तोहमत लगा रहे हैं। वही नमा यसीरु शहादतन बित्तिसाल अल-क़ज़ा बिही, और काजी का फैसला साथ मिलने की वजह से ही ये गवाही बनेगा। फ़ैदा लम यत्तसिल, जब इनके साथ काजी का फैसला नहीं मिला, यानी अभी काजी का फैसला पूरा ही नहीं हुआ, हद नाफिज ही नहीं हुई, तो फैदा लम यत्तसिल, जब काजी का फैसला इनके कलाम के साथ नहीं मिला, बकिया कज़फन, तो इनका कलाम कज़फ होकर ही बाकी रहा। फयुहद्दूना, तो इन सबको हद लगाई जाएगी। आगे देखिए, फइन कानू खमसतन फरजअ अहदुहुम फला शैअ अलैहिम। इससे पहले आपने मसला पढ़ा था कि अगर चार गवाहों की वजह से एक आदमी को रजम कर दिया गया और एक ने रुजू किया है तो सिर्फ इसी एक रुजू करने वाले को हद भी लगेगी और इस पर जमान भी आएगा। अब सूरत यह है कि गवाह जो थे वो पांच या छह थे, उनमें से एक या दो रुजू कर लेते हैं, तो क्या इनको हद लगाई जाएगी और क्या इन पर जमान आएगा? उस आदमी को रजम किया जा चुका है। कहते हैं नहीं भाई, अगरचे एक या दो ने रुजू कर लिया लेकिन अभी भी चार गवाह बाकी हैं, शहादत का निसाब पूरा है, और जब शहादत का निसाब पूरा है तो लिहाजा पूरा हक मौजूद है। उनकी गवाही की वजह से ही क्या था, काजी ने फैसला किया था, तो अभी भी पूरा का पूरा हक मौजूद है, लिहाजा किसी पर हद नहीं। हां, अगर एक और आदमी भी रुजू कर लेता है तो अब शहादत का निसाब कम हो गया। जब शहादत का निसाब कम हो गया तो अब जितने रुजू करने वाले थे उन सबको हद लगाई जाएगी। मसलन गवाही दी थी पांच अफराद ने, पहले एक ने रुजू किया तो इसको हद नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी भी पूरा का पूरा हक बाकी है, चार गवाह मौजूद हैं। अगर एक और रुजू कर लेता है, अब शहादत का निसाब कम हो गया, तो अब सिर्फ ये रुजू करने वाले जो दोनों हैं इनको हद लगाई जाएगी, बाकी तीन को नहीं, क्योंकि उनकी गवाही के साथ काजी का फैसला मिल चुका है। भाई तो कहते हैं इन कानू खमसतन, और अगर वो गवाह पांच थे, फराजा अहदुहुम, तो उनमें से एक ने रुजू कर लिया यानी रजम के बाद, तो उनमें से एक ने रुजू कर लिया रजम के बाद, फला शैअ अलैहिम, तो उन पर कुछ भी नहीं, बाकियों पर कुछ भी नहीं आएगा। लिअन्ना बक़िया मन यबका बिशहादतिही कुल्लुल हक़, इसलिए क्योंकि बाकी हैं वो अफराद जिनकी शहादत की वजह से सारा हक बाकी है। वो अफराद अभी भी बाकी हैं जिनकी शहादत की वजह से सारा हक बाकी है, यानी अभी भी चार गवाह मौजूद हैं। तो कहते हैं लिअन्नहु बकिया मन यबका बिशहादतिही कुल्लुल हक़, इसलिए क्योंकि बाकी हैं वो अफराद के बाकी है जिनकी शहादत की वजह से सारा हक, वह हुआ शहादतुल अरबाई, और वो चार अफराद की गवाही है कि उसकी वजह से हक बाकी है। फइन रजअ आखरु, और अगर एक और ने भी रुजू कर लिया खुद्दा, तो अब इन दोनों को हद लगाई जाएगी। एक ने तो पहले रुजू किया था, उस पर हद नहीं क्योंकि अभी भी शहादत का निसाब पूरा है, लेकिन अगर एक और रुजू कर लेता है अब शहादत का निसाब कम हो गया, तो लिहाजा अब इन दोनों को हद लगाई जाएगी। तो यह माना है फइन रजअ आखरु, अगर एक और ने रुजू कर लिया खुद्दा, तो अब इन दोनों को हद लगाई जाएगी। व गरीमा रुब अदियती, व गरीमा, और ये दोनों जामिन होंगे रुब अदियती रुब अदियत के, ये दोनों जामिन होंगे रुब अदियत के। भाई रुब अदियत क्यों, एक पर रुब अदियत आनी चाहिए थी, आप दोनों पर मिलाकर रुब अदियत वाजिब कर रहे हैं। कहते हैं भाई अभी भी तीन गवाह मौजूद हैं, हद के लिए कितने गवाह चाहिए थे, चार, और गवाह कुल कितने थे, पांच, तो पांच में से दो ने रुजू किया है, तीन गवाह तो अभी भी बाकी हैं, तो जो बाकी हैं उनका एतबार है, तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है, तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है, तो जो बाकी रह गए उनका एतबार है, रुजू करने वालों का एतबार नहीं। तो तीन चौथाई हक अभी भी बाकी है, सिर्फ एक चौथाई हक कम हो गया, तो वो एक चौथाई हक दोनों रुजू करने वालों पर आ जाएगा, वो दोनों को मिलकर अदा करना होगा। भाई तो ये माना है वह गरीमा रुब अदियती, और ये दोनों रुजू करने वाले जामिन होंगे दियत के चौथे हिस्से के। अमल हद्दु फलीमा जकरना, तो हद जो है उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी, इन पर हद भी आएगी, हद भी आएगी, इसलिए क्योंकि इनकी शहादत कजफ बन गई। पीछे बतलाया था ना, इनको हमने काजिफुल मैयत करार दे दिया है, तो ये काजिफुल मैयत हो गए क्योंकि इनकी शहादत तो कजफ बन गई, और फिलहाल कजफ बनी है जबकि वो आदमी मर चुका है, तो ये काजिफुल मैयत हुए, लिहाजा इन पर हद लगाई जाएगी। तो कहते हैं अमल हद फलिमाजा करना, तो इन पर हद आएगी उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी। वह अमल गरामतु फली अन्नहु बकिया मन यबका बिशहादती ही सलासतु अरबाइल हकी, और बाकी गरामा, भाई गरामा मैंने आपको बताया जुर्माने को कहते हैं। वह अमल गरामतु, और बाकी जुर्माना जो है यानी इनको दियत का चौथा हिस्सा अदा करना पड़ेगा, उसकी क्या वजह है। कहते हैं वह अमल गरामतु, और बाकी जुर्माना जो है फली अन्नहु बकिया, इसलिए क्योंकि बाकी हैं मन वो अफराद यबका बिशहादती ही सलासतु अरबाइल हकी, कि जिनकी गवाही की वजह से तीन चौथाई हक बाकी है, अभी भी वो अफराद बाकी हैं जिनकी गवाही की वजह से तीन चौथाई हक बाकी है। भाई तो कहते हैं वह अमल गरामतु फली अन्नहु बकिया मन यबका बिशहादती ही सलासतु अरबाइल हकी, और बाकी जुर्माना जो है वो इसलिए क्योंकि बाकी हैं वो अफराद की जिनकी गवाही की वजह से तीन चौथाई हक बाकी है। वल मुअतबरु बकाउ मन बकिया ला रुजू मन रजा, हिदाया की फसीह बलीग इबारतें चल रही हैं। भाई कहते हैं वल मुअतबरु बकाउ मन बकिया ला रुजू मन रजा, और वो जो मुअतबर है यानी जिसका एतबार किया जाता है, बका उमम बकिया, वो बाकी रहने वालों का बाकी रहना मुअतबर है, रुजू करने वालों का रुजू मुअतबर नहीं। जैसे मैंने अभी बताया पांच गवाह थे, तो एक ने रुजू कर लिया तो बाकी कितने, चार, लिहाजा इस एक पर ना हद आएगी और ना इस पर समान आएगा, क्योंकि मुअतबर बाकी रहने वाले हैं, रुजू करने वाले मुअतबर नहीं है। भाई आसान लफ्जों में यूं कहो, बाकी रहने वाले मोतबर हैं, रुजू करने वाले मोतबर नहीं है। भाई तो कहते हैं वल मोतबरु बका उमम बकिया, और मोतबर जो है वो बाकी रहने वालों की बका है, बका उमन बकिया, मन बकिया वो जो बाकी हैं, बका उमम बकिया बाकी रहने वालों की बका, मोतबर जो है वो बाकी रहने वालों की बका है, यानी उनका बाकी रहना है। तो कहते हैं वल मोतबरु बका उमम बकिया, और मोतबर जो है वो बाकी रहने वालों का बाकी रहना है। ला रुजू मन रजा, ना कि रुजू करने वालों का रुजू। अला मा उरिफा, उस वजह से जो जाना गया है, यानी जो किताबु शहादात के अंदर जाना गया है कि बाकी रहने वाले मोतबर हैं, रुजू करने वाले मोतबर नहीं है भाई। आगे देखिए, व इन शहीद अरबातुन अला रजुलिम बिज़्ज़िना फज़ुक्कू फरुजिमा फ़ाइदा शुहूदु मजूसुन औ अबीदुन फद्दियतु अलल मुज़क्कीन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह। भाई गुज़श्ता सबक में मैंने आपको बतलाया था कि जिना के मसले के अंदर गवाह तीन किस्म के हो सकते हैं। कुछ हैं शुहूद जिना, जो काजी के पास जाकर जिना की गवाही देते हैं। कुछ हैं शुहूद तज़किया, जक्का युजक की तस्किया का माना है दूसरे को पाक बताना, यानी पाक करार देना, यहां मुराद है आदिल करार देना। तो यह है शुहूद तस्किया, जिन्होंने गवाहों को आदिल करार दिया है। और तीसरी किस्म के गवाह जो हैं वो शुहूद एहसान हैं, जो किसी आदमी के मोहसन होने की गवाही देते हैं कि यह शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। मैंने आपको बतलाया था शुहूद एहसान अगर रुजू कर लें तो फिर इस सूरत में उन पर कोई जमान नहीं, लेकिन अगर शुहूदे जिना या शुहूदे तज़किया रुजू कर लें तो फिर इन पर जमान आएगा। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन शहीद अरबातुन अला रजुलिन बिज़्ज़िना, और अगर चार आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी, फज़ुक्कू, तो उनका तज़किया किया गया, यानी उनको पाक करार दिया गया। काजी ने उनकी तादील करवाई, खुफिया खत लिखे कुछ आदिल लोगों को और इनके बारे में पता करवाया, और उन्होंने जवाब दिया कि ये गवाह आदिल हैं भाई, ये गवाह काबिल एतमाद हैं। तो कहते हैं फजुक्कू, तो उनका तज़किया किया गया। फरुजीमा, तो फिर उस शख्स को रजम कर दिया गया। फ़ाइदा शुहूदु मजूसुन औ अबीदुन, तो अचानक वो गवाह जो थे मजूसी थे या गुलाम थे, बाद में पता चला ये गवाह तो मजूसी हैं या ये गवाह तो गुलाम है भाई। और मजूसी तो काफिर है, और काफिर तो मुसलमान के खिलाफ ना अहले तहमुल है ना अहले शहादत है। इसी तरह गुलाम भी ना अहले तहमुल है और ना अहले शहादत है भाई। तो कहते हैं फ़ाइदा शुहूदु मजूसुन औ अबीदुन, तो अचानक वो गवाह जो है मजूसी थे या गुलाम थे। फद्दियतु अलल मुज़क्कीन इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो दियत जो है तज़किया करने वालों पर आएगी इमाम साहिब के नजदीक। इमाम साहब फरमाते हैं कि मालूम हुआ काजी ने गलती की है, और काजी ने जो गलती की है वो उन तज़किया करने वालों की तादील की वजह से की है, लिहाजा जमान उन पर आएगा। मतन में सिर्फ इतना मसला जिक्र है कि जमान उन तज़किया करने वालों पर आएगा, लेकिन साहिब हिदाया वजाहत फरमाएंगे कि असल सूरत यह है कि तज़किया करने वालों पर जमान तब आएगा जब वो रुजू कर लें, जब तस्किया करने वाले रुजू कर लें, जब वो खुद इकरार करें कि ये हमें पता था ये मजूसी और गुलाम है, हमने फिर भी इनको आदिल बताया, तो फिर इस सूरत में उन पर जमान आएगा, वरना वैसे उन पर जमान नहीं होगा भाई। तो कहते हैं फद्दियतु अलल मुज़क्कीन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, तो दियत जो है वो तज़किया करने वालों पर आएगी इमाम साहिब के नजदीक। मानाहु, इस कौल का माना यह है, अब साहिब हिदाया वजाहत फरमाएंगे कि तज़किया करने वालों पर कब जमान आएगा, जब वो रुजू करें। कहते हैं मानाहु, इस कौल का माना यह है, इदा रजऊ अनि तज़कियती, जब तज़किया करने वाले तज़किया से रुजू कर लें। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाह तआला हुआ अला बैतुल माली, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जमान बैतुल माल पर आएगा, वो फरमाते हैं जमान बैतुल माल पर आएगा। शुहूदे तस्किया पर जमान नहीं आ सकता, उन्होंने तो गवाहों की अच्छी सिफतें बयान की, इन्होंने तो गवाहों की अच्छी सिफतें बयान की कि ये आजाद हैं, देखो ये तो अच्छी सिफत है, ये मुसलमान हैं, ये अच्छी सिफत है, या इसी तरह ये आदिल हैं, ये सारी क्या हैं, अच्छी सिफत। और किसी की अच्छी सिफत बयान करने पर उस पर जमान वाजिब नहीं किया जा सकता। साहिबैन फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे शुहूद एहसान, शुहूद एहसान जो काजी के पास आकर गवाही देते हैं कि यह शख्स मोहसन है या मोहसन नहीं, और उसके लिए कितनी शराइत है मोहसन के लिए, एहसान और रजम, एहसान और रजम के लिए कितनी शराइत हैं, 7 शराइत हैं आप पढ़ चुके हैं कि वो शख्स जिस पर जिना का इल्जाम है वो आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उसने निकाह सहीह किया हो और निकाह सही के बाद बीवी से सोहबत भी की हो और बीवी और खावन दोनों मोहसन हो भाई। तो साहिबैन फरमाते हैं शुहूद एहसान जब रुजू कर लें तो फिर बिल इत्तेफाक उन पर जमान नहीं आता। इमाम साहब भी फरमाते हैं शुहूद एहसान अगर रुजू कर लेंगे तो उन पर जमान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जमान? क्योंकि शुहूद एहसान ने तो सिर्फ अच्छी सिफतें बयान की हैं, तारीफ की है कि यह आदमी आजाद है, ये मुसलमान है, इसने निकाह सही किया है और बीवी से सोहबत की है और बीवी और खामन दोनों मोहसन हैं, ये सारी तो वो अच्छी सिफतें बयान कर रहे हैं जी। तो जैसे शुहूद एहसान अच्छी सिफतें बयान करते हैं और वो रुजू कर रहे हैं तो उन पर जमान नहीं होता, इसी तरह शुहूद तजकिया जो हैं उन्होंने भी अच्छी सिफतें ही बयान की थी गवाहों के अंदर, तो लिहाजा वो भी अगर रुजू कर लें तो उन पर जमान नहीं आएगा जी। तो साहिबैन फरमाते हैं कि ये शुहूद तजकिया भी शुहूद एहसान की तरह हैं, जैसे शुहूद एहसान अच्छी सिफतें बयान करते हैं इसी तरह शुहूद तजकिया ने भी अच्छी सिफतें बयान की हैं, और सिर्फ फर्क इतना है कि शुहूद एहसान ने मशहूद अलै के अंदर अच्छी सिफतें बयान की थी जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही थी, उसमें अच्छी सिफतें बयान की थी शुहूद एहसान ने, और शुहूद तजकिया जो हैं उन्होंने गवाहों के अंदर अच्छी सिफतें बयान की हैं। तो जैसे शुहूद एहसान पर रुजो की सूरत में जमान नहीं आता, शुहूद तजकिया पर भी रुजो की सूरत में जमान नहीं आएगा, ये साहिबैन फरमाते हैं। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, शुहूद तजकिया अगर रुजो करेंगे तो उन पर जमान आएगा भाई। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुम अल्लाह तआला हुआ अला बैतुल माली, और साहिबैन फरमाते हैं कि जमान जो है वो बैतुल माल पर आएगा, बैतुल माल पर आएगा, यानी शुहूद तस्किया पर जमान नहीं आएगा बल्कि बैतुल माल पर जमान आएगा। शुहूद तस्किया ने तो अच्छी सिफतें बयान की हैं। वकील हादा इदा कालू तअम्मदन तस्कियत मा इल्मिना बिहालिहिम, वकील और कहा गया है, यहां से साहिब हिदाया महल्ले इख्तिलाफ बयान कर रहे हैं कि जो इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है कि शुहूद तस्किया पर जमान आएगा या नहीं आएगा, यह उस वक्त है जब शुहूद तस्किया रुजू करें और खुद कहें कि हमें इन गवाहों का पता था कि ये गुलाम है या मजूसी है, फिर भी हमने जानबूझकर तस्किया किया था, इलम के बावजूद हमने जानबूझकर तस्किया था, उस सूरत में है साहिबैन और इमाम साहिब का इख्तिलाफ। जबकि अगर शुहूद तस्किया कहें हमसे गलती हो गई तो फिर बिल इत्तेफाक उन पर जमान नहीं आएगा। शुहूद तस्किया क्या कहते हैं? हमसे गलती हो गई, यानी हम तो समझे थे फुला आदमी है इसलिए हमने आदिल कह दिया, ये तो कोई और आदमी थे। तो इस सूरत में याद रखो बिल इत्तेफाक शुहूद तस्किया पर जमान नहीं। तो इमाम साहब और साहिबैन के इख्तिलाफ किस सूरत में है? जब शुहूद तस्किया रुजो कर लें और बताएं कि हमें इलम था कि ये गुलाम या मजूसी हैं, हमने फिर भी इनका तस्किया किया। तो कहते हैं वकील और कहा गया है हादा इदा कालू, कि ये इख्तिलाफ उस वक्त है जब वो शुहूद तस्किया ने कहा तअम्मदना तस्किया था कि हमने जानबूझ कर तस्किया किया मा इल्मीना बिहालिहिम, बावजूद इसके कि हमें उन गवाहों की हालत का इलम था। लहुमा, अब साहिबैन की दलील आ गई। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन्नहुम असनौ अल शुहूदी खैरा, कि शुहूद तजकिया जो हैं इन्होंने गवाहों पर तारीफ की है खैर की। असना युसने इसना का माना तारीफ करना। अन्नहुम असनौ अल शुहूदी खैरा, कि ये शुहूद तजकिया जो हैं इन्होंने तो शुहूद जिना पर खैर की तारीफ की है, इन्होंने शुहूद जिना की तारीफ की है कि ये आदिल हैं, मुसलमान हैं, आजाद हैं, ये तो इन्होंने तारीफ की है। तो अन्नहुम असनौ अल शुहूदी खैरा, शुहूद तस्किया ने शुहूद जिना पर खैर की तारीफ की है। फसार कमा इदा असनौ अल मशहूदी अलैहि खैरा, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इन्होंने तारीफ की हो मशहूद अलैह पर खैर की। मशहूद अलैह की तारीफ की हो खैर के साथ, भी अनशहिदू अला एहसानी ही, बाई सूरत की इन्होंने उसके मोहसन होने पर गवाही दी हो। तो ये तस्किया करने वालों ने गवाहों की तारीफ की है, ये इसी तरह है जैसे ये मशहूद अलैह की तारीफ करें, यानी शहादत एहसान दें भाई, यानी मोहसन होने पर गवाही दें भाई। व लहू, और इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्ना शहादत इन्नमा तसीरु हुज्जतन आमिलतन बितस्किया। अब इमाम साहेब की दलील आ गई। इमाम साहब फरमाते हैं कि शुहूद तस्किया पर जमान आएगा, वजह यह कि ये जो काजी ने शुहूद जिना की गवाही कबूल की वो शुहूद तस्किया की वजह से, अगर वो तस्किया न करते तो काजी इन शुहूद जिना की गवाही भी कबूल न करता। तो शुहूद जिना वो है इल्लत काजी के हुक्म की, कोई गवाह जिना की गवाही आकर देता है तो फिर काजी फैसला करता है हद का। तो शुहूद जिना जो काजी के सामने गवाही दे रहे हैं ये हैं काजी के फैसले की इल्लत, और तज़किया करने वालों के तज़किये की वजह से इनकी गवाही को काजी ने कबूल किया है, तो गोया वो इल्लतुल इल्लत के दर्जे में है। शुहूद तज़किया इल्लतुल इल्लत के दर्जे में है, उनका तज़किया होगा तो काजी शुहूद जिना की गवाही कबूल करेगा, उनका तज़किया नहीं तो काजी शुहूद जिना की गवाही भी कबूल नहीं करेगा। तो मालूम हुआ शुहूद तज़किया की गवाही जो है वो इल्लतुल इल्लत के दर्जे में है, यानी वो इल्लत की इल्लत है भाई। तो वह लहू, इमाम साहेब की दलील यह है कि अन्न शहादत इन्नमा तसीरु हुज्जतन आमिलतन बितस्कियती, कि गवाही जो है वो ऐसी हुज्जत बन जाती है जो अमल करने वाली हो, बितस्कियती तस्किया की वजह से गवाही हुज्जत बन जाती है और अमल दिखाती है अपना वो तस्किया की वजह से। तो वो इमाम साहब फरमाते हैं अन्न शहादत इन्नमा तसीरु हुज्जतन आमिलतन बितस्कियती, कि गवाही जो है वो हुज्जत आमिला बन जाती है तस्किया की वजह से। फकानति तस्कियतु फी माना इल्लतिल इल्लती, तो तस्किया जो है वो इल्लतुल इल्लत के माना में है। फयुजाफुल हुक्म इलैहा, तो हुक्म की निस्बत इसकी तरफ की जाएगी, यानी इस रजम की निस्बत शुहूद तस्किया की तरफ की जाएगी कि इनके तस्किये की वजह से इसको रजम किया गया। तो फयुजाफुल हुक्म इलैहा, तो लिहाजा इस हुक्म की निस्बत तस्किया की तरफ की जाएगी। बिखिलाफी शुहूदिल एहसानी, बखिलाफ शुहूद एहसान के। लिअन्नहु महज़ु शर्ती, इसलिए क्योंकि वो तो महज़ शर्त है। साहिबैन ने शुहूद तस्किया को कियास किया था शुहूद एहसान पर, तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से कि आप शुहूद तस्किया को शुहूद एहसान पर कियास नहीं कर सकते। शुहूद तस्किया तो इल्लत और इल्लत के दर्जे में है, लेकिन शुहूद एहसान तो इल्लत और इल्लत के दर्जे में नहीं। शुहूद एहसान की वजह से कोई इस पर हद जिना जारी नहीं की गई, बल्कि हद जिना तो उसके जिना की वजह से जारी की गई है। तो शुहूद एहसान वो सिर्फ शर्त के दर्जे में है, वो सिर्फ शर्त के दर्जे में है, यानी जैसे शर्त से एक शय की मारिफत होती है, उसकी पहचान हो जाती है। जैसे खावन ने बीवी से कहा कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो बीवी उस घर में जाएगी तो तलाक हो जाएगी। तो देखो उस घर में जाना ये क्या था, शर्त, और जब उस घर में गई तो इस शर्त ने पहचान करवा दी कि तलाक हो गई। इस शर्त ने क्या किया, पहचान करवा दी। सिर्फ इस घर में जाने की वजह से तलाक नहीं हुई, तलाक तो खावंद के अंति तालिकुन इन दखलती दार की वजह से हुई है, लेकिन शर्त ने सिर्फ पहचान करवाई है कि वो तलाक अब हो गई है। तो शर्त तो सिर्फ पहचान करवाती है, और मोहसन होना ये भी पहचान करवाता है कि इस आदमी को कौन सी हद जिना लगाई जाए, इसको रजम किया जाए या इसको कोड़े लगाए जाए। तो मालूम हुआ शहादत एहसान जो है वो इल्लतुल इल्लत के दर्जे में नहीं है, बल्कि वो सिर्फ शर्त के दर्जे में है। लिहाजा अगर शुहूद एहसान रुजू कर लें तो उन पर जमान नहीं आ सकता। तो कहते हैं बिखिलाफ ही शुहूद इल एहसानी, बखिलाफ मोहसन होने के जो गवाह हैं। लिअन्नहु महज़ु शर्ती, इसलिए क्योंकि मोहसन होना यह तो सिर्फ शर्त है। वला फर्का बैनहुमा इदा शहीदू बिलफ़ज़ती शहादती औ अखबरू, भाई वो शुहूद तस्किया जो हैं वो चाहे शहादत का लफ्ज जिक्र करें चाहे खबर देने का। भाई देखो जब गवाह गवाही देने के लिए काजी के पास आता है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे इस बात का पता है, बल्कि वो कहता है मैं गवाही देता हूं, तो तो गवाही का लफ्ज जिक्र करना जरूरी होता है शहादत के अंदर। तो ये जो शुहूदे तज़किया हैं, क्या इनकी शहादत के अंदर भी शहादत का लफ्ज होगा तो फिर ही इन पर जमान आएगा, या जिस तरह भी वो खबर दे दें कहते हैं नहीं इनकी शहादत के अंदर शहादत का लफ्ज होना जरूरी नहीं, चाहे ये लफ्ज जिक्र कर दें कि मैं शहादत देता हूं, चाहे ये लफ्ज जिक्र कर दें कि मैं खबर देता हूं, दोनों सूरतों में एक ही हुक्म है, जब ये रुजू कर लेंगे तो इन पर जमान आएगा भाई। तो कहते हैं वला फर्क बैनहुमा इदा शहिदु बिलफ्जति शहादती औ अखबरू, और कोई फर्क नहीं है कि जब ये शहादत के लफ्ज के साथ गवाही दें औ अखबरू या ये खबर दें। वहादा इदा अखबरू बिलहुर्रियति वल इस्लाम। अच्छा भाई याद रखो, ये जो इमाम साहब के नजदीक शुहूदे तस्किया पर जमान आएगा, ये उस वक्त आएगा जब शुहूदे तस्किया ने बतलाया था कि ये गवाह जो है आजाद हैं, ये गवाह मुसलमान हैं, और बाद में पता चला ये मुसलमान नहीं या ये आजाद नहीं, फिर इस सूरत में उन पर जमान आएगा। और अगर शुहूदे तस्किया ने सिर्फ इतना लिखा था कि ये आदिल हैं और वो गवाह गुलाम जाहिर हुए तो फिर वो रुजू भी कर लें फिर भी उन पर जमान नहीं आएगा। भाई क्यों? कहते हैं वजह यह कि उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है आदिल है, और आदिल किसे कहते हैं? जो दीन पर चलने वाला है, जो सच बोलने वाला है, और ये तो गुलाम भी ऐसा हो सकता है कि दीन पर चलने वाला हो और सच बोलने वाला हो भाई, तो लिहाजा इस सूरत में फिर इन पर जमान नहीं आएगा। तो कहते हैं वहादा, और ये जो जमान वाजिब होगा इमाम साहब के नजदीक के उस वक्त है, इदा अखबरू बिलहुर्रियति वल इस्लामी, जब शुहूदे तस्किया जो है आजादी और इस्लाम की खबर दें। अम्मा इदा कालू, और बाकी जब शुहूदे तस्किया ने यह कहा कि हुम उदूल, उनके ये आदिल हैं, वजहरू अबीदन, और वो गुलाम जाहिर हुए, तो ला यजमनूना, तो फिर यह जामिन नहीं होंगे। लिअन्न अल-अब्द कद यकून अदला, इसलिए क्योंकि गुलाम भी कभी कभार आदिल होता है। आगे देखिए वला जमाना अला शुहूदी, भाई ये जो शुहूदे जिना थे जिन्होंने गवाही दी थी जिना की, इन पर जमान आएगा या नहीं? भाई शुहूदे तस्किया ने तो रुजू कर लिया, तो ये जो शुहूदे जमान थे जो गुलाम थे या मजूसी थे, इन पर जमान आएगा या नहीं? कहते नहीं इन पर जमान नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इनका कलाम शहादत ही नहीं, जब इनका कलाम शहादत ही नहीं तो लिहाजा इन पर जमान भी नहीं। हां इन्होंने शहादत दी होती तो फिर इन पर जमान भी आना था, इन्होंने शहादत दी होती तो इन पर जमान आना था, लेकिन इनका कलाम तो शहादत नहीं है। इन्होंने बेशक शहादत दी है लेकिन वो हकीकत में शहादत नहीं, क्योंकि इनमें अदा की अहलियत ही नहीं है। तो कहते हैं वला जमाना अला शुहूदी, और शुहूदे जिना पर जमान नहीं होगा। लिअन्नहु लम यका कलामुहुम शहादतन, इसलिए क्योंकि इन शुहूदे जिना का कलाम जो है वो शहादत होकर वाकई नहीं हुआ, इनमें तो शहादत की अहलियत ही नहीं, लिहाजा इनका कलाम भी शहादत नहीं। इस पर इश्काल होता है कि आप कह रहे हैं कि इनका कलाम शहादत नहीं, हालांकि इसके साथ कज़ाए काजी मिल चुकी है, और आपने हमें बताया था कि गवाह की गवाही के साथ जब कज़ाए काजी मिल जाए तो फिर वो शहादत होती है, और आप यहां फरमा रहे हैं कि इनका कलाम शहादत ही नहीं है। तो जवाब याद रखना कि इनका कलाम शहादत नहीं है, इसलिए क्योंकि कहते हैं यकीनी तौर पर पता चल गया कि काजी से गलती हुई है, काजी ने जो इनकी गवाही कबूल की है वो यकीनी तौर पर काजी से गलती हुई है। जब काजी से यकीनी तौर पर गलती हुई है तो काजी का फैसला कल आदम हुआ, गोया काजी का फैसला यहां है ही नहीं, और जब काजी का फैसला है ही नहीं तो इनका कलाम भी शहादत नहीं बना। तवज्जो है, अगर काजी का फैसला होता तो फिर इनका कलाम शहादत बन जाता, लेकिन काजी के फैसले का तो यहां एतबार ही नहीं है, यूं समझो काजी का फैसला हुआ ही नहीं, और अब काजी का फैसला हुआ ही नहीं तो इनका कलाम भी शहादत न बना। ये माना है कि गवाहों पर जमान नहीं आएगा। लिअन्नहु लम यका कलामुहुम शहादतन, इसलिए क्योंकि इन गवाहों का कलाम जो है वो शहादत होकर वाकई नहीं हुआ। वला युहद्दून हद अल-क़ज़्फ़, और इन गवाहों को हद कज़फ़ भी नहीं लगाई जाएगी। लिअन्नहुम क़ज़फ़ू हय्यन, इसलिए क्योंकि इन्होंने तोहमत लगाई थी जिंदा आदमी पर। वक़द माता, और तहकीक वो तो मर चुका है, उसे तो रजम कर दिया गया। फला यूरसु अन्हु, तो लिहाजा ये क़ज़फ़ जो है इसमें वरासत जारी नहीं होगी उसकी तरफ से। बात समझ में आ गई? मैंने आपको बतलाया था कि हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती, तो इन्होंने जिंदा आदमी पर तोहमत लगाई थी, जिंदा आदमी पर तोहमत लगाई थी और वह आदमी तो मर चुका है और अब इन पर हद कजफ जारी नहीं की जा सकती। इस पर इश्काल होता है कि वह आदमी रजम कर दिया गया और रजम करने के बाद अब पता चला कि इनकी गवाही सही नहीं थी, शुहूदे तस्किया ने रुजू कर लिया है, तो आपने इनको काजिफ हय करार दिया, जिंदा पर तोहमत लगाने वाला, हालांकि ये तो काजिफ मैयत है। जैसे पिछले मसले में आपने हमें बतलाया था कि चार आदमियों की गवाही की वजह से एक आदमी को रजम कर दिया गया और फिर एक आदमी ने रुजू कर लिया, तो फिर ये काजिफ मैयत है और अब काजिफ मैयत है तो इस पर हद कजफ जारी होगी। और यहां पर आप कह रहे हैं कि यह काजिफ हई है, यानी जिंदा पर तोहमत लगाने वाला है और वह आदमी तो मर चुका है, और जब मकजूफ मर जाए तो हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती, तो आप इसको काजिफ मैयत क्यों नहीं करार देते? तवज्जो है, जब मकजूफ के मरने के बाद गवाह रुजू करते थे तो उनको काजिफ मैयत आप करार देते थे और यहां इसको काजिफ हई करार दे रहे हैं, इसको भी काजिफ मैयत करार देना चाहिए। तो उसका जवाब याद रखना कि गवाह को हम काजिफ मैयत उस वक्त करार देते थे जब गवाह अपनी गवाही से रुजू कर लेता था, और यहां तो इनकी गवाही ही नहीं है। अभी मैंने आपको बतलाया कि इनकी गवाही जो है वो गवाही ही नहीं है, क्योंकि काजी का फैसला गलत था, काजी के फैसले का कोई एतबार नहीं। जब काजी के फैसले का कोई एतबार नहीं तो इस काजी के फैसले से ही तो इनके कलाम ने गवाही बनना था, तो इनका कलाम भी गवाही नहीं। तो जब गवाह गवाही के बाद रुजू करता है, तवज्जो है, जब गवाह गवाही के बाद रुजू करता है तो वो जो उसने शुरू के अंदर गवाही दी थी वही गवाही पलट कर तोहमत बन जाती है, कजफ बन जाती है। लेकिन यहां पर ये जो मजूसी या गुलाम है इनका कलाम तो शहादत बना ही नहीं, इनका कलाम तो शहादत बना ही नहीं, लिहाजा वो जो इनका कलाम था उसकी वजह से इनको काजिफ मैयत भी नहीं करार दिया जा सकता, वो क्योंकि वो शहादत नहीं थी, उसी शहादत ने पलटकर कजफ बनना था, वो जो जिंदगी में इन्होंने गवाही दी थी उसी ने पलटकर कजफ बनना था, लेकिन वो तो शहादत ही नहीं, जब वो शहादत ही नहीं तो वो पलटकर कजफ भी नहीं बनेगी। भाई गवाह को काजिफ मैयत तब करार दिया जाता है जब वो अपनी गवाही से रुजू कर लेता है, और ये जो मजूसी है या गुलाम है इन्होंने तो अपनी गवाही से रुजू नहीं किया, ये तो सिर्फ वो जो तजकिया करने वाले गवाह हैं उन्होंने रुजू किया है। तो लिहाजा गवाह जब अपनी गवाही से रुजू कर लेता है तो उसको काजिफ मैयत करार दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो इन गवाहों ने रुजू नहीं किया, लिहाजा इनको काजिफ मैयत भी करार नहीं दिया जा सकता। तो इस पर सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है, गवाह रुजू कर ले तो आप उसको काजिफ मैयत करार देते हैं, और अगर वो रुजू नहीं करता, वैसे पता चल जाए कि गुलाम है या मजूसी है, तो आप उसे काजिफ मैयत करार नहीं देते, ये फर्क क्यों करते हैं आप? इश्काल समझ में आ रहा है कि ये दोनों में आप फर्क क्यों करते हैं? तो जवाब याद रखना कि वजह ये है कि जब गवाह रुजू करता है तो वो जो इसने शुरू के अंदर गवाही दी थी वही गवाही पलट कर कजफ बन जाती है, वो जिना का इल्जाम बन जाती है, गवाही रहती ही नहीं है। तो गवाह जब भी रुजू करता है तो वो जो इसने माजी के अंदर गवाही दी थी इस मसले में वही गवाही पलटकर जिना का इल्जाम यानी कजफ बन गई, जबकि ये जो गुलाम और मजूसी हैं इनकी तो गवाही गवाही ही नहीं थी, हमने आपको बतला दिया, तो वो पलटकर कजफ कैसे बनेगी भाई? इनकी गवाही तो गवाही ही नहीं थी, क्योंकि काजी ने यकीनी तौर पर गलत फैसला किया है, तो काजी का फैसला कल आदम है, उसका कोई एतबार ही नहीं। जब काजी का फैसला ही कल आदम है तो काजी के फैसले से ही तो इनकी गवाही गवाही बन रही थी, तो इनकी गवाही भी गवाही नहीं, वो इनका कलाम ही था, सिर्फ गवाही नहीं थी। जब सिर्फ कलाम था वो तो उन्होंने जिंदा आदमी पर जिना की तोहमत लगाई थी और वो जिंदा आदमी तो मर चुका है, उसको तो रजम कर दिया गया है, लिहाजा इन पर हद कजफ भी साबित नहीं। होगी। बात समझ में आई? तो कहते हैं वला जमाना अला शुहूदी, और गवाहों पर जमान नहीं होगा। लिअन्नहु लम यका कलाम हम शहादतन, इसलिए क्योंकि इनका कलाम शहादत होकर वाकई नहीं हुआ। वला युहद्दून हद्दल कज़्फी, और इनको हद कजफ भी नहीं लगाई जाएगी। लिअन्नहुम कज़फू हय्यन वकद माता, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक जिंदा आदमी पर तोहमत लगाई थी। वकद माता, और तहकीक वो मर चुका है। फला यूरसु अनहु, लिहाजा ये हद कजफ उससे मौरूस नहीं होगा, यानी इसमें वरासत जारी नहीं होगी। हासिल कलाम, फिर समझ लें यह मुश्किल मकाम था। भाई देखो, शुहूद तस्किया ने रुजो कर लिया है, तो शुहूद तस्किया पर तो जमान आएगा, तो ये जो गुलाम या मजूसी थे क्या इन पर जमान नहीं आएगा? तो साहिब हिदायत ने बताया कि नहीं, इन पर जमान नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि इनका कलाम शहादत ही नहीं बना। अगर इनका कलाम शहादत होता तो फिर ही इन पर जमान आना था, लेकिन इनका तो वैसे ही कलाम था, शहादत नहीं थी। भाई क्यों शहादत नहीं थी? आपने हमें बताया था कि शहादत के साथ जब काजी का फैसला मिल जाता है तो वो शहादत पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो ये जो गुलाम या मजूसी गवाह थे, इनकी गवाही के साथ भी काजी का फैसला मिल चुका है, तो इनकी शहादत मजबूत हो चुकी है, और आप हमें कह रहे हैं कि इनका कलाम शहादत ही नहीं। तो उसका भी जवाब मैंने जिक्र किया कि यहां पर ये जो गुलाम और मजूसी हैं, ये तो अहले शहादत ही नहीं है। जब ये अहले शहादत नहीं है तो मालूम हुआ काजी का फैसला यकीनी तौर पर गलत था। जब काजी का फैसला यकीनी तौर पर गलत है तो यूं समझो गोया काजी का फैसला हुआ ही नहीं। जब काजी का फैसला हुआ ही नहीं तो फिर इनका कलाम भी शहादत नहीं बना। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने बतलाया कि इन पर हद कजफ भी जारी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने एक जिंदा आदमी पर जिना की तोहमत लगाई थी और इस वक्त वो मर चुका है, और हद कजफ के अंदर वरासत जारी नहीं होती। इस पर फिर इश्काल हुआ कि आपने इनको काजिफुल हय करार दिया, आपने इसको काजिफुल मैयत क्यों नहीं करार दिया? काजिफुल मैयत क्यों नहीं करार दिया? जैसे पिछले मसले के अंदर आपने हमें बतलाया था कि रजम के बाद अगर कोई गवाह अपनी गवाही से रुजू कर ले तो वो काजिफ मैयत होता है और उस पर हद जारी की जाती है। तो उसका जवाब मैंने बतलाया कि काजिफ मैयत उस वक्त हम करार देते हैं जब गवाह अपनी गवाही से रुजू कर ले, और ये जो गुलाम और मजूसी हैं, इन्होंने तो अपनी गवाही से रुजू नहीं किया, ये तो सिर्फ मुजक्की जो है, जो तस्किया करने वाले हैं, उन्होंने रुजू किया है। भाई इन्होंने तो अपनी गवाही से रुजू नहीं किया। इस पर फिर इश्काल हुआ कि क्या वजह है कि गवाह अगर अपनी गवाही से रुजू कर ले तो फिर आप उसे काजिफ मैयत करार देते हैं, और अगर गवाह के बारे में पता चल जाए कि वह गुलाम है या मजूसी है तो फिर आप उसको काजिफ मैयत करार नहीं देते, उसकी क्या वजह है? कहते हैं वजह यह कि जब गवाह गवाही से रुजू करता है तो वो जो इसने माजी के अंदर शहादत दी थी वही शहादत कजफ बन जाती है, वही शहादत कजफ बन जाती है, और गुलाम और मजूसी जो हैं, इन्होंने जो शहादत दी थी हमने बता दिया वो तो शहादत ही नहीं है, तो वो पलटकर कजफ भी नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, कहते हैं वईदा शहीदा अरबातुन अला रजुलिन बिज़िना फअमर अलकाजी बिरजमिही। भाई सूरत मसला यह कि चार गवाहों ने गवाही दे दी एक आदमी के खिलाफ जिना पर, और काजी ने उसके रजम का फैसला कर दिया। याद रखो, जब काजी किसी के रजम का फैसला कर दे या किसी के कत्ल का फैसला कर दे कि इसको कत्ल कर दिया जाए या इसको रजम कर दिया जाए, तो वो शख्स मुबाहुद्दम बन जाता है। याद रखो, ममलिकत इस्लामिया के अंदर चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, सब महफूजुद्दम है। ममलिकत इस्लामिया सबके जानो माल की हिफाजत करती है, तो ममलिकत इस्लामिया में मुसलमान भी महफूजुद्दम और जिम्मी भी महफूजुद्दम, कोई अगर इनको कत्ल करेगा तो उसे भी कत्ल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो लेकिन यहां पर जब काजी किसी के बारे में फैसला कर दे कि इसको रजम किया जाएगा या इसको कत्ल किया जाएगा, तो यह शख्स महफूजुद्दम न रहा बल्कि यह मुबाहुद्दम हुआ, इसका खून मुबाह हो गया, इसका खून हलाल हो गया। अब अगर इसको कोई कत्ल कर दे या कोई इसका हाथ पांव काट दे तो फिर उस शख्स पर कोई जमान नहीं आएगा। आम आदमी को तो कोई कत्ल कर दे तो फिर वहां या किसास आता है या दियत आती है, लेकिन ये जो शख्स जिसके बारे में काजी ने फैसला कर दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए या रजम कर दिया जाए, यह मुबाहुद्दम हो चुका है, इसका खून हलाल हो चुका है। कोई अगर इसको कत्ल कर दे या इसका हाथ पांव वगैरह काट दे तो उस पर कोई जमान नहीं आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सूरत मसला यह है कि एक आदमी के खिलाफ चार आदमियों ने जिना की गवाही दे दी, काजी ने उसे रजम करने का फैसला कर दिया। जब काजी ने फैसला कर दिया यह शख्स अब मुबाहुद्दम हो गया, इसका खून हलाल हो गया। उसके बाद अभी इसको रजम नहीं किया था कि उससे पहले ही एक शख्स ने इसको कत्ल कर दिया, तो फिर इस आदमी पर कोई जमान नहीं आता। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो गवाह थे ये तो गुलाम थे जी। ये गवाह तो गुलाम थे, तो कहते हैं इस सूरत के अंदर कातिल पर दियत वाजिब होगी जी। इस सूरत में कातिल पर दियत वाजिब होगी, क्योंकि इतना पता चल गया कि उस शख्स को बिला वजह ही कत्ल किया गया है। भाई होना तो यह चाहिए था, इस आदमी पर किसास आना चाहिए था, क्योंकि इसने तलवार से उसको कत्ल किया है। और मैंने आपको बतलाया कि कोई शख्स दूसरे शख्स को आलाय कत्ल के जरिए कत्ल कर दे तो फिर वहां किसास लिया जाता है। तो कातिल ने भी तलवार से कत्ल किया है तो कियास तो यह तकाजा करता है इस कातिल को भी कत्ल करना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन इसको कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि उस पर दियत आएगी। वजह यह कि उसने इसको मुबाहुद्दम समझकर कत्ल किया, उसने इसको मुबाहुद्दम समझकर कत्ल किया, क्योंकि काजी का फैसला मौजूद था कि इसको रजम कर दिया जाए। भाई तो कहते हैं वह ईदा शहीदा अरबातुन अला रजुलिन बिज़्ज़िना, और जब चार गवाहों ने गवाही दे दी एक आदमी के खिलाफ जिना की, फअमर अल काजी बी रजमी ही, तो काजी ने हुक्म दिया उसको रजम करने का। फज़रब रजुलुन उनुकहू, उनुक कहते हैं गर्दन को, फज़रब रजुलुन उनुकहू, तो एक आदमी ने उसकी गर्दन मार दी। गर्दन मारने से मुराद है कत्ल करना, क्योंकि उमूमन तलवार के जरिए जब कत्ल किया जाता है तो गर्दन पर तलवार मारी जाती है। तो कहते हैं फज़ारा बारा जुलून उनुकहू, तो एक आदमी ने उसकी गर्दन मार दी। सुम मवुजिदा शुहूदु अबीदन, फिर गवाहों को गुलाम पाया गया। फअलल कातिल दियतु, तो कातिल पर दियत वाजिब होगी। वफिल कियासी यजिबुल किसासु, और कियास में तो उस पर किसास वाजिब होना चाहिए। लिअन्नहु कतल नफ्सन मासूमतन बिगैर हक्किन, इसलिए क्योंकि इसने कत्ल किया है नफ्सन एक ऐसी जान को, मासूमतन जो महफूज है। मासूम का क्या माना? महफूज। भाई अंबिया मासूम है, क्या माना? यानी वो गुनाहों से और मासी से महफूज हैं, अंबिया से गुनाह नहीं हो सकते भाई। तो मासूम का माना है महफूज, तो यहां उसने कत्ल किया है मासूम जान को, यानी एक महफूज जान को जो महफूजुद्दम है, जिसका खून महफूज है। तो कहते हैं लिअन्नहु कतल नफ्सन मासूमतन, इसलिए क्योंकि इसने एक मासूम जान को कत्ल किया है, बिगैर हक्किन ना हक तौर पर, तो इसको भी कत्ल करना चाहिए, कियासी तकाजा करता है। वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नल क़ज़ा असहीहुन, कि यह काजी का फैसला सहीह है, जाहिरन जाहिरी एतबार से, वक्तल कत्ल कत्ल के वक्त जी। भाई जिस वक्त इस शख्स ने कत्ल किया उस वक्त तक तो यह इलम नहीं था कि यह गवाह गुलाम है, तो उस वक्त तक तो काजी का फैसला सही था जाहिर के एतबार से, फिर जब पता चला कि यह गवाह गुलाम है फिर पता चला काजी का फैसला सही नहीं, तो इसने जब कत्ल किया उस वक्त जाहिरी एतबार से काजी का फैसला सही था, उस वक्त तक अभी गवाहों के गुलाम होने का पता नहीं चला था, लिहाजा इसलिए इस पर किसास नहीं आएगा। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसानी, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नल क़ज़ा असहीहुन ज़ाहिरन वक्तल क़त्ली, कि ये काजी का यह फैसला सही है कत्ल के वक्त जाहिरी एतबार से। फ़ाओरसा शुभहतन, तो इसने शुभा पैदा कर दिया, इस कजाए काजी ने शुबा पैदा कर दिया कि यह मुबाहुद्दम हो चुका है भाई। बेखिलाफ इमा इदा कतलहु कबल अल कजाई, हां अगर कजाए काजी से पहले कोई शख्स को कत्ल करेगा तो तो फिर उसको भी किसास में कतल किया जाएगा। भाई कहते हैं बेखिलाफ इमा इदा कतलहू कबल अल कजाई, बखिलाफ इसके कि जब वो उसको काजी के फैसले से पहले कतल कर दे तो वहां किसास आएगा। लिअन शहादत लम तसिर हुज्जतन बादू, इसलिए क्योंकि गवाही वो हुज्जत नहीं बनी उसके बाद। भाई गवाहों ने गवाही आकर दे दी काजी के पास कि यह शादीशुदा आदमी है, इसने जिना किया है। काजी ने अभी फैसला नहीं किया था, उससे पहले ही एक आदमी ने उस जिना करने वाले को कत्ल कर दिया जी। तो यहां तो शहादत तो हो चुकी है, लेकिन शहादत हुज्जत तब बनती है जब उसके साथ काजी का फैसला मिले। लिहाजा यहां पर किसी किस्म का शुबा नहीं है तो इस कातिल को कत्ल किया जाएगा। तो कहते हैं बखिलाफ इमा इदा कतलहू कबल अल कजाई, बखिलाफ इसके कि जब कातिल उसको काजी के फैसले से पहले कत्ल कर दे। लिअन शहादत लम तसिर हुज्जतम बादू, इसलिए क्योंकि उनकी गवाही अभी तक हुज्जत नहीं बनी। बादू शहादत के बाद, शहादत देने के बाद भी उन गवाहों की गवाही अभी शहादत नहीं बनी जब तक काजी फैसला नहीं करेगा। वली अन्नहु ज़न्नहु मुबाहद्दमी, और नीज इसलिए क्योंकि इस कातिल ने तो उस आदमी को मुबाहुद्दम समझा था। मुअतमिदन अला दलील मुबीहिन, एतमाद करते हुए एक मुबाह करने वाली दलील पर, एक दलील मौजूद थी जो उस आदमी के कत्ल को मुबाह कर रही थी और वह कजाए काजी था। भाई तो कहते हैं वली अन्नहु ज़न्नहु मुबाहद्दमी, और इसलिए क्योंकि कातिल ने उस शख्स को मुबाहुद्दम समझा था। मुअतमिदन अला दलील मुबीहिन, एक मुबाह कर देने वाली दलील पर एतमाद करते हुए। फसार कमा इदा ज़न्नहु हरबियन, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इस शख्स ने उसको हरबी समझा हो। व अलैहि अलामतुहुम, और हाल यह है कि उस पर हरबियों की अलामत भी हो। भाई एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल कर देता है, वो समझता है शायद ये हरबी है क्योंकि उसके कपड़ों पर हरबियों की एक अलामत मौजूद थी। तो याद रखो इस सूरत में भी कातिल पर किसास नहीं आएगा क्योंकि उसने एक दलील पर एतमाद किया है जो बतला रही थी कि ये हरबी है। अगरचे वो हरबी नहीं था लेकिन उसके लिबास या कपड़ों पर कोई निशानी मौजूद थी जो हरबियों के कपड़ों पर होती हैं, तो इसने उस दलील पर एतमाद करते हुए उसको कत्ल कर दिया। तो इस सूरत में भी याद रखो कि सास नहीं आएगा, सिर्फ दियत आएगी उस कातिल पर। भाई तो यहां पर भी इसी तरह इस कातिल पर किसास नहीं आएगा बल्कि दियत आएगी। तो कहते हैं फसारा कमा इदाजन नहु हरबियन, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इस कातिल ने उसको हरबी समझा हो। व अलैहि अलामतुहुम, और हाल ये था कि उस पर हरबियों की अलामत भी थी। भाई व तजिबुद्दियतु फी मालिही, और दियत जो है वो इस कातिल के माल में वाजिब होगी। भाई मैंने आपको बतलाया था कि ये जो दियत आती है ये सारे कबीले वालों पर आती है और ये 3 साल में अदा करना पड़ती है। 3 साल में, यानी 1 साल के अंदर भी सुलुस, दूसरे साल के अंदर भी सुलुस और तीसरे साल के अंदर भी सुलुस दियत अदा की जाएगी। लेकिन ये कत्ले आमद है, इस आदमी ने जानबूझकर दूसरे को कत्ल किया है, तो कियास तो तकाजा कर रहा था इसको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन इस्तेहसानन इससे किसास साकित हो गया क्योंकि जिस तरह हुदूद शुबे की वजह से साकित हो जाती हैं, इसी तरह किसास भी शुबे की वजह से साकित हो जाता है। तो लिहाजा शुबे की वजह से किसास तो साकित हो गया और उसकी जगह दियत आ गई, लेकिन यह दियत कत्ले आमद की वजह से आई है, जानबूझकर कत्ल करने की वजह से आई है, लिहाजा यह इसको खुद ही अदा करना होगी। इसके अंदर कबीले वाले इसके मददगार नहीं होंगे। याद रखो ये जो कबीले वाले हैं ये उस आदमी के मददगार बनते हैं, लेकिन उस वक्त जब उसने गलती से कत्ल किया हो। अगर एक आदमी ने जानबूझकर कत्ल किया है फिर सारे जुर्म का बोझ उसी को उठाना पड़ेगा, कबीला उसकी मदद नहीं करेगा। भाई तो कहते हैं वतजिबुद्दियतु फी मालिही, और दियत जो है इसी कातिल के माल में वाजिब होगी। लिअन्नहु आमदुन, इसलिए क्योंकि ये कत्ले आमद है। वल आवाकिलु ला ताकिलुल आमदा, और आकिला जो है वो कत्ले आमद की दियत अदा नहीं करते। आकला याकिलु का माना है दियत अदा करना, दियत अदा करने वाले आकिला। भाई आकिला जमा क्या है? आवाकिल। तो कहते हैं वल अवाकिलुला ताकिलुल आमदा, और आकिला जो है वो कत्ले आमद की दियत अदा नहीं करते। वयजिबु जालिका फी सलासी सीनीना, और ये दियत जो है तीन सालों में वाजिब होगी, यानी तीन सालों में अदा की जाएगी तीन किस्तें करके। लिअन्नहु वजब बिनफ्सिल क़त्ल, इसलिए क्योंकि ये वाजिब हुई है नफ्स कत्ल की वजह से। याद रखो जो माल नफ्स कत्ल की वजह से वाजिब हो वो तीन साल में अदा करना पड़ता है, लेकिन वो माल जो सुला वगैरह की वजह से वाजिब हो वो फिर वो उसी वक्त अदा करना पड़ता है, उसमें इतनी तीन साल की मुद्दत नहीं होगी। मसलन एक आदमी ने दूसरे आदमी को कत्ल कर दिया, अब किसास में इस कातिल को भी कत्ल किया जाएगा, लेकिन इस कातिल के साथ मकतूल के अवलिया ने सुलह कर ली कि हमें आप 50 लाख रुपए दे दें तो हम आपसे किसास नहीं लेते, तो चुनाचे आपस में सुलह हो गई। अब ये जो माल वाजिब हुआ है कातिल पर, यह नफ्स से कत्ल की वजह से वाजिब नहीं हुआ बल्कि सुलह की वजह से वाजिब हुआ है, लिहाजा इसके अंदर तीन साल की मुद्दत नहीं होगी, ये फौरी अदा करना पड़ेगा। तो कहते हैं वयजिबु ज़ालिका फी सलासी सीनीना, और ये माल वाजिब होगा तीन सालों में। लिअन्नहु वजब बिनफ्सिल क़त्ल, इसलिए क्योंकि ये माल वाजिब हुआ है नफ्स कत्ल की वजह से। आगे देखिए वह इन रजमा सुम्मा वुजिदु अबीदन फदियतु अला बैतिल माल, यही मसला है भाई, एक आदमी के खिलाफ चार आदमियों ने गवाही दी और काजी ने उसे रजम करने का फैसला कर दिया, अब यह आदमी मुबाहुद दम बन गया। पहले सूरत क्या थी कि एक आदमी ने उसको तलवार से कत्ल किया, अब सूरत यह है कि उसी आदमी ने इसको रजम कर दिया, काजी का फैसला करने के बाद इस आदमी ने उसको पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया, और फिर बाद में पता चला कि ये जो गवाह थे ये तो गुलाम थे जी। तो फिर इस सूरत के अंदर दियत जो है उस कातिल पर नहीं आएगी बल्कि बैतुल माल पर आएगी, क्योंकि काजी की गलती की वजह से इस आदमी की जान गई है, ये गवाह तो गवाह बन ही नहीं सकते थे क्योंकि ये तो गुलाम थे भाई। इस कातिल जिसने रजम किया है इस पर क्यों नहीं दियत आती? कहते हैं भाई इसने तो काजी के हुक्म की तामील की है, काजी ने भी फैसला किया था रजम करने का और इसने भी उसको रजम किया है, जबकि पिछले मसले में इसने काजी के हुक्म की तामील नहीं की थी क्योंकि काजी ने तो रजम करने का हुक्म दिया था न कि तलवार से कत्ल करने का, तो पिछले मसले में उसने काजी के हुक्म की तामील नहीं की थी इसलिए वहां दियत उसी कातिल पर आई, लेकिन यहां पर इसने काजी के हुक्म की तामील की है कि रजम किया है तो लिहाजा दियत बैतुल माल पर आएगी, क्योंकि बहरहाल काजी से गलती हुई, ये गवाह तो गुलाम थे भाई। तो कहते हैं वह इन रजमा, तो यहां रजमा इसको फेले मारूफ पढ़ना है भाई, कहते हैं वह इन रजमा, और अगर उस आदमी ने इसको रजम कर दिया जिसके खिलाफ काजी ने रजम का फैसला किया है, इसको रजम कर दिया उस आदमी ने, सुम्मवु जिदु अबीदन, फिर वो गवाह गुलाम पाए गए, फदियतु अला बैतिल माली, तो दियत जो है वो बैतुल माल पर होगी। लिअन्नहुम तसला अमरल इमामी, इसलिए क्योंकि इस आदमी ने तो इमाम के हुक्म की तामील की है। इमतसला यमतसिलु इम्तिसाल का माना है हुक्म की तामील करना, फरमाबरदारी करना। तो कहते हैं लिअन्नहुम तसला अमरल इमामी, ये जो रजम करने वाला है इसने इमाम के हुक्म की तामील की है, फनुकिला फिअलुहु इलैही, लिहाजा इस आदमी का फेल मुंतकिल हो जाएगा इमाम की तरफ, और इमाम तो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है लिहाजा मुसलमानों के माल में से जमान दिया जाएगा। वलव बाशरहू बिनफ्सी ही, और अगर इमाम खुद इस रजम को सरंजाम देता तो तजिबु दियतु फी बैतिल माल लिमा ज़करना, तो इस सूरत में भी दियत जो है बैतुल माल में वाजिब होती लिमा ज़करना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी कि जल्लाद का फेल किसकी तरफ मुंतकिल होता है, काजी की तरफ। तो अगर इमाम खुद भी इस आदमी को रजम करता और बाद में गवाहों के बारे में पता चलता कि ये तो गुलाम हैं, तो इस सूरत के अंदर भी ये जमान किस पर आना था, बैतुल माल पर। तो जब किसी ने काजी के हुक्म की तामील की है तो वो भी काजी ही के फेल की तरह है, तो वो जमान बैतुल माल पर आएगा भाई। तो कहते हैं वलौ बाशरहू बिनफ्सी ही, और अगर इमाम खुद इस रजम को सरंजाम दे देता तो तजिबु दियतु फी बैतिल माल लिमा ज़करना, तो इस सूरत में भी दियत जो है बैतुल माल पर वाजिब होती उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी। कजा हाजा, तो इसी तरह यह भी है, यानी इस आदमी का फेल भी काजी की तरह मुंतकिल हो जाएगा और जमान बैतुल माल से अदा किया जाएगा। बिखिलाफ इमा इदा ज़रबा उनुकहू, बखिलाफ इसके कि जब इसने उस आदमी की गर्दन मारी थी यानी इसको कत्ल किया था तो फिर खुद इस कातिल को दियत अदा करना पड़ी। लिअन्नहु लम यतमिर अमरहू, इसलिए क्योंकि उसने काजी के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं की थी वहां पर। तो इसका फेल काजी की तरह वहां मुंतकिल नहीं होगा। जब काजी की तरह मुंतकिल नहीं है, इसका अपना फेल है, तो दियत भी इसी कातिल पर आएगी भाई, उस सूरत में जब इसने उसको तलवार से कत्ल किया था। वह इदा शहीदु अलारा जुलिम बि जीना, और जब गवाहों ने गवाही दी एक आदमी के खिलाफ जीना की, वह कालू, और वह गवाह कहते हैं तअम्मद न नजारा, कि हमने जान बूझ कर देखा। भाई सूरत मसाला यह कि गवाह जो है गवाही देने आए जीना की, तो जाहिर सी बात है कि ये जिना की गवाही तभी देंगे जब इन्होंने उस मर्द और औरत की शर्मगाह की तरफ देखा हो, और जानबूझकर किसी की शर्मगाह की तरफ देखना ये तो इंसान को फासिक बना देता है। तो ये गवाह अगर कहें हमने जानबूझकर देखा है, तो फिर तो ये फासिक बन गए, फिर तो इनकी गवाही कबूल नहीं करनी चाहिए। कहते नहीं, फिर भी इनकी गवाही कबूल की जाएगी, इसलिए क्योंकि तहम्मुल शहादत के लिए देखना जरूरी था। जिना के बारे में गवाही देने के लिए देखना जरूरी था, उसके बगैर तो कोई गवाह बन ही नहीं सकता जिना पर। तो यहां जरूरत की वजह से इनका देखना जायज हो गया, जैसे तबीब या दाई जो है उसके लिए शर्मगाह की तरफ देखना जायज हो जाता है। एक डॉक्टर है और एक शख्स की शर्मगाह पर कोई जख्म वगैरह है, तो उस डॉक्टर के लिए शर्मगाह की तरफ देखना जायज। इसी तरह दाई, भाई दाई वो औरत जो बच्चे की पैदाइश के वक्त मौजूद होती है, वो भी उस औरत की शर्मगाह पर उसकी नजर पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी देखना जायज है जरूरत की वजह से। तो जैसे डॉक्टर या तबीब जो है, और इसी तरह दाई है, उसके लिए जरूरत की वजह से शर्मगाह की तरफ देखना जायज है, इसी तरह इन गवाहों के लिए भी जिना का गवाह बनने के लिए शर्मगाह की तरफ देखना जायज है। लिहाजा इससे ये फासिक नहीं बनेंगे और इनकी गवाही कबूल की जाएगी। तो कहते हैं वह इदा शहीदु अला रजुल बि जिना, और जब गवाहों ने गवाही दी किसी आदमी के खिलाफ जिना की, वह कालू, और उन्होंने कहा तअम्मदना नजारा, कि हमने जानबूझकर नजर की, कुबिलत शहादतुहुम, तो फिर भी उनकी गवाही कबूल की जाएगी। लिअन्नहु युबाहुन नज़रु लहुम, इसलिए क्योंकि उनके लिए देखना मुबाह है, जरूरत तहम्मुल शहादति, तहम्मुल शहादत की जरूरत की वजह से, फअशबहत तबीब अवल काबिलता, तो यह मुशाबे हो गया तबीब और काबिला यानी दाई के, वो दाई वो औरत जो बच्चे की पैदाइश के वक्त मौजूद हो, तो यह मुशाबे हो गया तबीब और काबिला के, तो इनके लिए शर्मगाह की तरफ जरूरत की वजह से देखना जायज हुआ, तो इससे यह फासिक न हुए। भाई बात समझ में आ गई। भाई देखिए यहां पर इस्तेहसान का जिक्र आया। भाई मैंने पहले भी किताब के शुरू में जिक्र किया था कि इस्तेहसान किसे कहते हैं, अब चूंकि काफी वक्त गुजर गया, एक दफा फिर मैं दोहरा देता हूं ताकि आपके जहन में बात ताजा हो जाए। मैंने आपको बतलाया था कि इस्तेहसान उस मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील को कहते हैं कि जिसके मुकाबले में कियास आए, यानी एक मसले के अंदर आप एक आयत जिक्र करते हैं और दूसरा शख्स कियास जिक्र करता है, तो यहां पर देखो ये जो आयत है इसको तरजीह होगी और इसको इस्तेहसान कहेंगे। या एक मसले के अंदर आप हदीस को दलील के तौर पर जिक्र करते हैं या इजमा को दलील के तौर पर जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ मुखालिफ जो है वो कियास को दलील के तौर पर जिक्र करता है, तो ये जो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील है यानी आयत या हदीस है या इजमा है, इसको इस्तेहसान कहेंगे, इस्तेहसान कहेंगे। लेकिन इस्तेहसान तभी कहेंगे जब इसके मुकाबले में कियास मौजूद हो, तो इस्तेहसान वो मुत्तफ़क़ुन अलैह दलील है जिसके मुकाबले में कियास आए। लेकिन ज्यादातर इस्तेहसान का इतलाक जो है कियास खफी पर होता है। याद रखो एक है कियास जली और एक है कियास खफी। कियास जली उसे कहते हैं जिसमें ज्यादा गौर व फिक्र करना नहीं पड़ता, जहन फौरन वहां तक पहुंच जाता है, इसको कहते हैं कियास जली। जली का माना है जाहिर, यानी बात जाहिर होती है, जहन फौरन वहां तक पहुंच जाता है। जबकि इसके मुकाबले में है एक कियास खफी। खफी का माना पोशीदा, यानी कियास खफी के अंदर बात पोशीदा होती है और गहरी होती है, तो सोचना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है, फिर वहां तक जहन पहुंचता है। तो कियास जली वो है जहां तक फौरन जहन पहुंच जाए, और कियास खफी वो है जहां गौर व फिक्र करना पड़ता हो। तो मैंने बतलाया कि इस्तेहसान का लफ्ज ज्यादातर कियास खफी के लिए बोला जाता है, लेकिन कियास खफी को भी इस्तेहसान तब कहते हैं जब इसके मुकाबले में कियास जली मौजूद हो। एक तरफ कियास खफी है और एक तरफ कियास जली है, तो इस कियास खफी को इस्तेहसान कहेंगे क्योंकि इसके मुकाबले में कियास जली मौजूद है। और अगर कियास खफी के मुकाबले में कियास जली न हो, फिर जितना मर्जी गहरा कियास हो उसको कियास ही कहते हैं, इस्तेहसान नहीं कहते। भाई बात समझ में आ गई। और इस्तेहसान को इस्तेहसान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पसंदीदा होता है, इसमें लोगों के लिए आसानी होती है। तो इस्तेहसान का माना पसंदीदा होना, तो इसीलिए इसको इस्तेहसान कहते हैं क्योंकि इसमें लोगों के लिए आसानी होती है, यह पसंदीदा होता है। बात समझ में आ गई। तो यह है इस्तेहसान। भाई आगे देखिए, कहते हैं वह ईदा शहीद अरबातुन अला रजुलिम बिज़िना फअन करल एहसान वलहुम्र अतुन कद वलदत मिन हु फइन नहु युर्जमु। सूरत मसला यह कि चार आदमियों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी और उस शख्स ने अपने मोहसन होने का इनकार किया कि मैं मोहसन नहीं हूं, यानी मेरे अंदर एहसान वाली बाकी सिफात तो मौजूद हैं लेकिन मैंने बीवी के साथ सोहबत नहीं की, लिहाजा मुझे रजम की सजा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि मुझे कोड़े लगने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस आदमी की बीवी एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, तो फिर इस सूरत में याद रखो जब बच्चे का नसब इस आदमी से साबित है तो मालूम हुआ यह बीवी के साथ सोहबत कर चुका है, तो इस आदमी को रजम किया जाएगा। कहते हैं वह ईदा शहीद अरबातुन अला रजुलिम बिज़िना, और जब चार गवाहों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी, फअनकर अल एहसाना, तो उस मशहूद आले ने मोहसन होने का इनकार किया, वलहुम रअतुन कद वलदत मिनहु, और इस आदमी की एक बीवी है जो इस आदमी से एक बच्चे को जन्म दे चुकी है, फइन्नहु युर्जमु, तो इस आदमी को रजम किया जाएगा। मानाहु, इस कौल का माना यह है, भाई मतन के अंदर आया था फअन करल एहसाना, इस आदमी ने मोहसन होने का इनकार किया, इसका क्या माना है? साहिबे हिदाया वजाहत फरमाएंगे कि माना यह है कि उस शख्स ने बीवी के साथ सोहबत होने का इनकार किया है, बाकी चीजों का इनकार नहीं किया। तो कहते हैं मानाहु, इस कौल का माना यह है कि अन्नहु युनकिरु दुखूल बाद वजूद साइरि शराइति, कि इस शख्स ने सोहबत का इनकार किया है मोहसन होने की बाकी शराइत के पाए जाने के बाद, लिअन्न अल-हुक्म बिसबातिन नसबि मिन्हु हुक्म बिद्दुखूल अलैहि, लिअन्न अल-हुक्म बिसबातिन नसबि मिन्हु, इसलिए क्योंकि इस आदमी से नसब के साबित होने का हुक्म, हुक्म बिद्दुखूल अलैही, ये इस आदमी पर सोहबत करने का हुक्म है। जब इस बच्चे का नसब इस आदमी से साबित हो गया मालूम हुआ इस आदमी ने सोहबत की है, तो बच्चे के नसब के साबित होने का हुक्म इस आदमी पर लगाना, वो इस आदमी पर सोहबत करने का हुक्म लगाना है। भाई ये माना है, लिअन्न अल-हुक्म बिसबातिन नसबि मिन्हु, इसलिए क्योंकि इस आदमी से उस बच्चे के नसब के साबित होने का हुक्म लगाना, हुक्म बिद्दुखूल अलैही, ये इस आदमी पर सोहबत करने का हुक्म लगाना है, वलिहादा लौ तल्लकहा, और इसीलिए अगर इस आदमी ने अपनी इस बीवी को तलाक दे दी, युअक्किबुर रजअता, तो यह तलाक अपने पीछे रुजू को लाएगी। भाई आपने पढ़ा है कि खावंद अगर अपनी बीवी को तलाक दे सोहबत के बाद तो फिर उसके बाद उस औरत पर इद्दत आती है और फिर इस इद्दत के अंदर खावंद रुजू भी कर सकता है, लेकिन अगर खावंद ने सोहबत नहीं की और उससे पहले बीवी को तलाक दे दे तो फिर इस सूरत में इस औरत पर कोई इद्दत नहीं है। भाई तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि यहां पर जब बच्चे का नसब साबित हो गया तो मालूम हुआ इस आदमी की सोहबत भी साबित हो गई, और इसी वजह से अगर यह आदमी अपनी इस बीवी को तलाक देगा तो इसके बाद इसे रुजू का भी हक होगा क्योंकि यह इस औरत से सोहबत कर चुका है। तो कहते हैं वलिहाद अला तल्लकहा युअक्किबुर रजअता, और इसीलिए अगर ये आदमी अपनी इस बीवी को तलाक दे युअक्किबुर रजअता, तो ये तलाक अपने पीछे रुजू को लाएगी, वल एहसान यसबुतु बिमिस्लिही, और मोहसन होना इस जैसी दलीलों से साबित हो जाता है, फइल्लम तकुम वलदत मिनहु, अगर वो औरत जो है उसने इस आदमी से बच्चे को जन्म नहीं दिया, औरत ने तो बच्चे को जन्म नहीं दिया लेकिन एक मर्द और दो औरतें आईं और उन्होंने गवाही दे दी कि यह शख्स मोहसन है, तो फिर इस सूरत के अंदर भी इसका मोहसन होना साबित हो जाएगा। तो कहते हैं फइल्लम तकुन वलदत मिनहु, और अगर उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया इस खावंद से, व शहीदा अलैहि बिल एहसानी रजुलुम वमरातानी, और इस आदमी के खिलाफ मोहसन होने की गवाही दे दी एक मर्द और दो औरतों ने, रोजीमा, तो इस आदमी को भी रजम किया जाएगा, खिलाफन ले जुफर अब शाफी रहिमहुमल्लाहु तआला, बखिलाफ इमाम जुफर और इमाम शाफी के, फशाफी रहिमहुल्लाहु तआला मर्रा अला असलिही, बस इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो है वो चले हैं अपने जाबते पर कि अन शहादतहुन गैर मकबूलतिन फी गैर अमवाली। भाई याद रखो, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं औरतों की गवाही सिर्फ माल के मसले में कबूल की जाएगी और किसी मसले के अंदर औरतों की गवाही कबूल नहीं। सिर्फ माली मामलात में औरत की गवाही को कबूल किया जाएगा और किसी मामले में कबूल नहीं किया जाएगा। तो यहां पर भी मुहसन होने का मामला है, यह तो माली मामला नहीं है, लिहाजा यहां पर औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं फशाफी रहमहुल्लाह ताला मर्रा अला असलिही, तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपने जाबते पर चले हैं कि अन शहादतहुन गैर मकबूलतीन, कि इन औरतों की गवाही गैर मकबूल है यानी कबूल नहीं की जाएगी, फी गैर अमवाल माल के अलावा में। वज़ुफ़रु रहमहुल्लाह ताला यकूलु, और इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नहु शर्तुन फी मअनल इल्लती, कि यह मुहसन होना शर्त है फी मअनल इल्लती, जो इल्लत के माना में है। यह मोहसन होना ऐसी शर्त है जो इल्लत के माना में है, जो इल्लत की तरह है। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मोहसन होना यह रजम के लिए शर्त है, लेकिन यह ऐसी शर्त है जो इल्लत के माना में है। जैसे किसी शख्स को रजम क्यों किया जाता है, जिना की वजह से, तो जैसे जिना इल्लत है रजम की, या जैसे जिना इल्लत है सौ कोड़े लगाने की, इसी तरह मोहसन होना यह है तो शर्त, लेकिन यह इल्लत के दर्जे में है क्योंकि इसकी वजह से उस आदमी की सजा सख्त हो जाएगी। अगर वो गैर मोहसन हुआ तो उसको सौ कोड़े लगेंगे, लेकिन अगर उसका मोहसन होना साबित हो जाए तो अब उसको रजम किया जाएगा। मालूम हुआ मोहसन होने की वजह से उसकी सजा सख्त हो गई। तो मोहसन होना इल्लत की तरह हुआ, और इल्लत जो है यानी जिना, उस पर तो सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाती है, औरतों की गवाही उसमें कबूल नहीं की जाती। तो इसी तरह यह शर्त जो इल्लत के दर्जे में है, इसमें भी सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाएगी, औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई, फिर समझें, फिर समझें। इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह मोहसन होना यह भी इल्लत की तरह है, क्योंकि जिस तरह इल्लत यानी वो जो जिना है, हद्दे जिना की इल्लत क्या होती है, जिना, जिना किया है इसलिए हद्दे जिना जारी की जाएगी। तो इमाम ज़ुफ़र फरमाते हैं कि यह मोहसन होने की जो सिफत है यह शर्त है, लेकिन यह इल्लत के दर्जे में है क्योंकि इसकी वजह से उस आदमी की सजा सख्त हो जाएगी और उसे रजम कर दिया जाएगा। तो यह इल्लत के दर्जे में है, और इल्लत पर तो गवाही जो है सिर्फ मर्दों की कबूल की जाती है। जिना के मसले में सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाती है, तो इल्लत के मसले में जब सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाती है तो यह शर्त जो इल्लत के माना में है, इसके अंदर भी सिर्फ मर्दों की गवाही कबूल की जाएगी, औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वज़ुफ़रु रहिमहुल्लाहु ताला यकूलु, और इमाम ज़ुफ़र रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नहु शर्तुन फी मअनल इल्लती, के मोहसन होना ऐसी शर्त है जो इल्लत के माना में है। लिअन्नल जिनायत यतगल्लज़ु इंदहु, इसलिए क्योंकि जुर्म जो है वो सख्त हो जाता है, इंदहु ऐ इंदल इहसानी, जब आदमी मोहसन हो, तो मोहसन होते वक्त जुर्म सख्त हो जाता है तो सजा भी सख्त हो जाती है। तो कहते हैं लिअन्नल जिनायत यतगल्लज़ु इंदहु, इसलिए क्योंकि जिना का जुर्म जो है वो सख्त हो जाता है मोहसन होते वक्त। फयुज़ाफुल हुक्म इलैही, तो हुक्म की निस्बत इसी की तरफ की जाती है। भाई कोई मोहसन जिना करे तो उसे रजम किया जाता है, तो इस रजम की निस्बत मोहसन होने की तरफ की जाती है। लोग कहते हैं कि इसको मोहसन होने की वजह से रजम किया गया, तो यह माना है फयुज़ाफुल हुक्म इलैही, तो रजम करने के हुक्म की निस्बत इसी मोहसन होने की तरफ की जाती है। फअशबह हकीकतल इल्लति, तो यह हकीकत इल्लत के मुशाबे हो गया, यह मोहसन होना हकीकत इल्लत के मुशाबे हुआ, और हकीकत इल्लत के अंदर औरतों की गवाही कबूल नहीं, तो इस शर्त के अंदर भी औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं फअशबहा हकीकत अलइल्लती, तो ये मुहसन होना हकीकत इल्लत यानी जिना के मुशाबे हो गया। फला तुकबल शहादतुन निसाई फीही, लिहाजा इसके अंदर औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। फसार कमा इदा शहीदा जिम्मी यानी अला जिम्मी यिन जना अब्दुहुल मुस्लिमु अन्नहु आतकहु कबल जिना फला तुकबल लिमा जकरना। इमाम जुफर की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि ये इसी तरह हो गया जैसे दो जिम्मी आदमी, जैसे दो जिम्मी जो हैं वो एक जिम्मी के खिलाफ गवाही दें कि इसने अपने मुसलमान गुलाम को आजाद किया है जिना से पहले। भाई देखो, याद रखो, जिम्मी जो हैं उनकी गवाही मुसलमान के खिलाफ तो कबूल नहीं की जाती, लेकिन अगर किसी मकाम पर मुसलमान के हक में गवाही की जरूरत पड़े तो जिम्मी वहां गवाही दे सकता है। अब एक शख्स है, जिम्मी है, उसका एक मुसलमान गुलाम है, और दो जिम्मी आदमियों ने काजी के पास आकर गवाही दी कि इस जिम्मी ने अपने मुसलमान गुलाम को आजाद कर दिया है, तो याद रखो इस गवाही के अंदर मुसलमान का फायदा है, उसको आजादी मिल रही है, लिहाजा बिल इत्तेफाक यह गवाही कबूल की जाएगी। मालूम हुआ दो जिम्मी अगर एक जिम्मी के खिलाफ गवाही दें कि इसने अपने मुसलमान गुलाम को आजाद कर दिया है तो इन दो जिम्मियों की गवाही को कबूल किया जाएगा। लेकिन सूरत यह है कि इस जिम्मी के मुसलमान गुलाम ने जिना किया है, और आप जानते हैं कि गुलाम अगर जिना करे तो उसको रजम नहीं किया जाता बल्कि उसको आजाद आदमी के मुकाबले में निसफ कूड़े लगाए जाते हैं यानी 50 कूड़े। तो एक जिम्मी के मुसलमान गुलाम ने जिना कर लिया और फिर दो जिम्मी उस जिम्मी के खिलाफ गवाही देने आ गए कि इसने अपने इस गुलाम मुसलमान को आजाद कर दिया है लेकिन जिना से पहले आजाद किया है, जिना से पहले आजाद किया है। अब याद रखो, अगर जिना से पहले यह आजाद है तो मालूम हुआ इसने आजाद होने की हालत में जिना किया है, तो इसको अब सजा के तौर पर 100 कोड़े लगेंगे। तो यहां पर याद रखो, इन जिम्मियों की गवाही मुसलमान गुलाम की आजादी के लिए कबूल की जाती है, लेकिन यहां पर इन जिम्मियों की गवाही की वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है, तो लिहाजा यह गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इन जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि ये क्या गवाही दे रहे हैं कि इस जिम्मी ने इस मुसलमान गुलाम को जिना से पहले आजाद किया था। तो वैसे आजादी पर गवाही देते तो ये गवाही कबूल की जाती, लेकिन इस गवाही की वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है, लिहाजा इसलिए ये गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि देखो यहां पर भी जिम्मियों की गवाही कबूल की जा रही थी लेकिन जब उसी गवाही की वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है तो उसको कबूल नहीं किया जा रहा क्योंकि ये इल्लत के दर्जे में है जी। ये गवाही इल्लत के दर्जे में हो गई। इसी तरह मुहसन होना भी इल्लत के दर्जे में है, उसकी वजह से जानी की सजा बढ़ जाती है, लिहाजा उसमें औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो इमाम जुफर फरमाते हैं फसार कमा इदा शहीदा जिम्मी यानी, तो कहते हैं ये इसी तरह हो गया जैसे दो जिम्मी गवाही दें अला जिम्मी यिन किसी ऐसे जिम्मी के खिलाफ जना अब्दुहुल मुस्लिम। देखो जिम्मी युन नकेरा है और उसके बाद जना फेल आ रहा है तो ये उसके लिए सिफत बनेगा, और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। भाई तो तर्जमा सुनिए, भाई कहते हैं कमा इदा शहीदा जिम्मी यानी जैसे गवाही दें दो जिम्मी आदमी अला जिम्मी यिन जना अब्दुहुल मुस्लिम एक ऐसे जिम्मी के खिलाफ कि जिसके मुसलमान गुलाम ने जिना किया है, और यह गवाही दें कि अन्नहु आतकहु कबल जिना कि जिम्मी ने इस मुसलमान गुलाम को जिना से पहले आजाद किया है। फला तुकबलु, तो इन जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लिमा जकरना, उसी वजह से जो हमने जिक्र कर दी कि इस गवाही की वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है, तो यह इल्लत पर गवाही के दर्जे में हुई, और इल्लत पर गवाही वो तो जिम्मियों की कबूल नहीं की जाती, कोई जिम्मी अगर मुसलमान के खिलाफ जिना की गवाही दें तो जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाती। तो जैसे मुसलमान के खिलाफ जिम्मियों की गवाही इल्लत पर कबूल नहीं की जाती, इसी तरह यहां पर भी इन जिम्मियों की वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है तो यहां भी इन जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि यह शर्त भी इल्लत के दर्जे में है। भाई वो गवाही तो सिर्फ मुसलमान की आजादी की दे रहे हैं, किस चीज की गवाही दे रहे हैं? मुसलमान की आजादी की, लेकिन आजादी शर्त थी 100 कोड़ों के लिए, वैसे तो 50 कोड़े लगेंगे, तो ये गवाही शर्त पर है, लेकिन ये शर्त किस दर्जे में है? इल्लत के दर्जे में है, इसकी वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है, तो लिहाजा इस पर भी जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। जैसे मुसलमान के खिलाफ जिना पर जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाती, इसी तरह यह शर्त जो इल्लत के दर्जे में है इस पर भी जिम्मियों की गवाही मुसलमान के खिलाफ कबूल नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यह माना है फला तुकबलू, तो इन जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लिमा दकरना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी कि यह शर्त है लेकिन इल्लत के माना में है, इसकी वजह से मुसलमान की सजा बढ़ रही है। भाई वलना, अब हमारी दलील आ गई। वलना और हमारी दलील यह है कि अनल इहसान इबारतुन अनिल खिसाल हमीदती, कि मोहसन होना यह इबारत है अच्छी सिफात से, खिसाल हमीदा काबिल तारीफ सिफात। हम कहते हैं कि मोहसन होना इबारत है काबिल तारीफ सिफात से। भाई जहां हुदूद की बात शुरू हुई थी वहां एहसान उर रजम साहिब हिदाया ने बतलाया था कि एहसान उर रजम के अंदर 7 शर्तें हैं कि वो शख्स आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उसने निकाह सही किया हो और उस निकाह सही के बाद उसने बीवी से सोहबत भी की हो और खावंद और बीवी दोनों सिफत एहसान पर हो। तो हम कहते हैं कि एहसान के अंदर जितनी सिफात जिक्र की गई हैं ये तो सारी अच्छी सिफतें हैं जी। ये सारी तो अच्छी सिफतें हैं और नीज ये सारी सिफतें जो हैं ये जिना से रोकने वाली हैं। वहां हमने बयान किया था कि ये एहसान की सिफात ये जिना से रोकने वाली हैं, इसलिए जब ये सिफात पाई जाएंगी तो फिर सजा भी सख्त दी जाएगी कि इतनी चीजें रोकने वाली मौजूद थी फिर भी इस आदमी ने जिना किया है तो फिर वहां सख्त सजा दी जाती है। तो हम कहते हैं कि मोहसन होना ये इबारत है काबिल तारीफ सिफात से और नीज ये वो सिफात हैं जो जिना से रोकने वाली हैं। जब ये जिना से रोकने वाली हैं तो ये जिना के दर्जे में नहीं। इमाम जुफर ने क्या बतलाया था कि मोहसन होना शर्त है लेकिन यह भी इल्लत के दर्जे में है, यानी जिना के दर्जे में है, और जैसे जिना पर औरतों की गवाही कबूल नहीं लिहाजा इस मोहसन होने में भी औरतों की गवाही कबूल नहीं क्योंकि यह शर्त इल्लत के दर्जे में है। हम कहते हैं नहीं, मोहसन होना इल्लत के दर्जे यानी जिना के दर्जे में नहीं है क्योंकि यह सिफात तो काबिल तारीफ है और यह तो जिना से रोकने वाली है और जो चीज एक चीज से रोकने वाली हो वो उसके दर्जे में कैसे हो सकती है भाई। तो कहते हैं वलाना और हमारी दलील यह है कि अनल एहसान इबारतुन अनिल खिसाल हमीदती, कि मोहसन होना यह इबारत है काबिल तारीफ सिफात से, व अन्नहा मानियतुम मिन जिना और नीज ये सिफात जो हैं ये जिना से रोकने वाली हैं, अला माजा करना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी भाई। फला यकून फी मानल इल्लती, लिहाजा मोहसन होना इल्लत यानी जिना के माना में नहीं है। वसारा कमा इदा शहीदू बिही फी गैरी हादिही हालती, वसारा और ये इसी तरह हो गया कमा इदा शहीदू बिही जैसे इन्होंने मोहसन होने की गवाही दी हो फी गैरी हादिही हालती इस हालत के अलावा में। भाई देखिए मसला ये चल रहा है कि 4 गवाहों ने एक आदमी के खिलाफ जिना की गवाही दी है और फिर एक मर्द और 2 औरतों ने उसके मोहसन होने की गवाही दी है। तो यहां पर इमाम जुफर फरमाते हैं कि यहां औरतों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी क्योंकि इसकी वजह से उस आदमी की सजा बढ़ रही है, उसको कोड़ों के बजाय रजम किया जाएगा। हम कहते हैं कि इस मसले को छोड़ दीजिए, जरा आम किसी मकाम पर किसी शख्स के मोहसन होने पर गवाही की जरूरत पेश आ गई, जिना का मसला नहीं है, रजम करने का मसला नहीं, किसी और मकाम पर एक मर्द और दो औरतों ने गवाही दी कि यह शख्स मुहसन है, तो वहां पर बिल इत्तेफाक इन औरतों की गवाही कबूल की जाती है। तो जब किसी और मकाम पर मुहसन होने के लिए औरतों की गवाही कबूल की जाती है, तो यहां पर भी मुहसन होने के लिए औरतों की गवाही कबूल की जाएगी। तो कहते हैं वसारा कमा इदा शहीदू बिही फी गैरी हादिहिल हालती, और यह ऐसे ही हो गया जैसे इन सब ने इसके मुहसन होने की गवाही दी हो इस हालत के इलावा के अंदर, बेखिलाफ इमा ज़करा, बखिलाफ उसके जो इमाम जुफर रहमला ने जिक्र किया। इमाम जुफर रहमला ने फरमाया था कि यह इसी तरह हो गया जैसे दो जिम्मी गवाही दें एक जिम्मी के खिलाफ कि इसने अपने मुसलमान गुलाम को जिना से पहले आजाद किया है, तो यह सूरत उसके बरखिलाफ है। इमाम जुफर ने क्या फरमाया था, यह औरतों की गवाही भी उन जिम्मियों की गवाही की तरह हो गई, और वो जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं, तो यह औरतों की गवाही भी कबूल नहीं। हम कहते हैं नहीं, यह सूरत मुख्तलिफ है। वजह यह है कि यहां पर जो जिम्मी गवाही दे रहे हैं उसका मुसलमान इनकार कर रहा है, जब मुसलमान इनकार कर रहा है तो जिम्मियों की गवाही मुसलमान के खिलाफ कबूल नहीं की जा सकती, या इस वजह से कि इस गवाही से मुसलमान का नुकसान होगा तो इसलिए गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अगर इसके अंदर मुसलमान का नुकसान ना होता तो यह गवाही भी कबूल कर ली जाती, ये गवाही भी कबूल कर ली जाती। तो कहते हैं बिखिलाफ इमाजा करा, बखिलाफ उसके जो इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया, लिअन्नल इत्क यसबुतु बि शहादतिहिमा, इसलिए क्योंकि मुसलमान की आजादी वो साबित हो जाती है दो जिम्मियों की गवाही से, वही नमा ला यसबुतु बि सबकी तारीखी, और मुसलमान की आजादी साबित नहीं हो रही बि सबकी तारीखी, तारीख के मुकदम होने की वजह से, तारीख के मुकदम होने की वजह से कि यह जिम्मी आजादी पर गवाही देने के साथ जो तारीख जिक्र कर रहे हैं वो जिना से पहले की है, और इस सूरत में मुसलमान की सजा बढ़ जाती है और उसको नुकसान होता है, इसलिए यहां उन जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए यहां पर उन जिम्मियों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि यह मुकदम तारीख जिक्र कर रहे हैं आजादी की। अगर यह मुकदम तारीख जिक्र न करते तो फिर इनकी गवाही यहां भी कबूल कर ली जाती। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं बेखिलाफ इमाजा करा, बखिलाफ उसके जो इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने जिक्र किया, लिअन्न अल-इत्क यसबुतु बि शहादतिहिमा, इसलिए क्योंकि मुसलमान गुलाम की आजादी दो जिम्मियों की गवाही से साबित हो जाती है, वही नमा ला यसबुतु बि सबकी तारीखी, और यहां पर तारीख के मुकदम होने की वजह से मुसलमान की आजादी इससे साबित नहीं होगी, लिअन्नहु युनकिरुहुल मुस्लिमु, इसलिए क्योंकि मुसलमान इस तारीख के मुकदम होने का इनकार कर रहा है, वो इस तारीख के मुकदम होने का इनकार कर रहा है, लिहाजा जिम्मियों की गवाही मुसलमान के खिलाफ हो गई, और जब मुसलमान के खिलाफ हुई तो अब कबूल नहीं की जाएगी। औ यतज़र्ररु बिहिल मुस्लिमु, यह इस वजह से कि इसकी वजह से मुसलमान को नुकसान होगा, और जिम्मियों की गवाही से मुसलमान को नुकसान हो तो यह गवाही कबूल नहीं की जाती। भाई आगे देखिए, फइन रजअ शुहूदुल इहसानी ला यज़मनून इंदना, भाई मैंने आपको बतलाया था कि जिना के मामले में तीन किस्म के गवाह हो सकते हैं, एक शुहूदे जिना है, एक शुहूदे तज़किया है, और एक शुहूदे एहसान है, और शुहूदे एहसान अगर रुजू कर लें तो फिर उन पर जमान नहीं आता, जबकि शुहूदे तज़किया या शुहूदे जिना जो है वो रुजू कर लें तो उन पर जमान आता है। तो वही मसला आप जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं फइन रजअ शुहूदुल एहसानी, और अगर शुहूदे एहसान जो है वो रुजू कर लें, ला यज़मनून इंदना, तो हमारे नजदीक वो जामिन नहीं होंगे, खिलाफन लिज़ुफर रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, वो फरमाते हैं ये जामिन होंगे। वह हुआ फरउ मा तकद्दमा, और ये इख्तिलाफ भी फरा है माकबल वाले इख्तिलाफ की, ये इख्तिलाफ भी फरा है माकबल वाले इख्तिलाफ की, भाई हमारे नजदीक जमान नहीं, इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ शर्त की गवाही दी है, और शर्त की वजह से तो इन पर जमान नहीं आ सकता, जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं कि यह शर्त ऐसी है जो इल्लत के माना में है, लिहाजा जब यह इल्लत के माना में है तो जैसे इल्लत के अंदर कोई गवाह रुजू करता है तो उस पर जमान आता है, तो यह शुहूद एहसान अगर रुजू करेंगे तो इन पर भी जमान आएगा, यह माना है। खिलाफन लिज़ुफर रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, वह हुआ फरउ मा तकद्दमा, और यह इख्तिलाफ भी फरा है माकबल वाले इख्तिलाफ की, ये इख्तिलाफ भी फरा है माकबल वाले इख्तिलाफ की। भाई बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई हादा वल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।